वो मैंने बयान किया था आपसे कि एथियज्म जो साइंस बेस्ड है, जो न्यू एथियज्म है, वो दो चीजों से फूटता है, यानी अगर उसकी इंटेलेक्चुअल आप बेसिस देखें, एक बायोलॉजी से बेस्ड एवोल्यूशनरी थ्योरी और दूसरा न्यू फिजिक्स से। बायोलॉजी बेस्ड हालांकि बाद में उसका जिक्र आना चाहिए, लेकिन हिस्टोरिकली ऐसे हुआ कि डार्विनियन जो एवोल्यूशन है उसका आइडिया जू ही आया, तो जो खुदा के बारे में तसव्वुरात थे उसके बारे में उसने शक पैदा कर दी, जो मेन स्ट्रीम जिस तरह खुदा के बारे में इस्तदलाल किया जाता था उसमें, तो पहले वो पैदा हुआ। और दूसरे नंबर पर फिर ये हुआ कि अभी जो न्यू फिजिक्स है रिसेंटली, बिल्कुल इसमें कुछ ऐसे नए आइडियाज आए हैं कि खुदा के वजूद के बगैर कायनात सेल्फ कंसिस्टेंट तरीके पर अपने अंदर से, अपने अपने वजूद से, अपने ही, यानी आप इसको कह सकते हैं कि सेल्फ एक्सप्लेनेशन अपनी प्रोवाइड कर दे, खुद अपनी तावील दे दे, खुद अपनी तौजीह पेश कर दे। तो जो थियोलॉजिकल इसका आर्गुमेंट है ना कि इस कायनात की तौजीह हो नहीं सकती खुदा के बगैर, उसको काउंटर करने के लिए ये फिर जो चीज है वो सामने आई। और इसमें एक चीज ये भी जहन में रहनी चाहिए कि न्यू एथियज्म में बुनियादें तो उसकी डार्विनियन एवोल्यूशन तक जाती हैं, लेकिन डार्विन खुद न्यू एथियस्ट नहीं थे। न्यू एथियस्ट का एक खास पर्सपेक्टिव ये भी है कि बहुत अग्रेसिव अग्रेशन के साथ अपनी बात पेश करना और बिलिटल करना रिलीजियस पीपल को, और एक किस्म का प्रोपेगेंडिस्ट अप्रोच है। अगर आप हिचन्स की, क्रिस्टोफर हिचन्स की चीजें देखें, रिचर्ड डॉकिंस की देखें, लेकिन बहरहाल उसमें मैं अभी नहीं जाऊंगा। कहने का मकसद ये है कि न्यू एथियज्म जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं, उसमें नया जो है वो क्लासिकल जो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन बेस्ड एथियज्म है उस तक इसकी बेसिस तो जाती हैं, लेकिन वो पहले से मौजूद था। जो न्यू एथियज्म है जिसने खास तौर से 9/11 के बाद अपनी वो जड़ पकड़ी है और बहुत पॉपुलर हुआ है, बहुत अग्रेशन के साथ तो सामने आया है, उसमें एक तो चीज अग्रेशन है, दूसरा ये न्यू फिजिक्स है। बहुत सारे फिजिसिस्ट जो हैं वो काफी अग्रेसिवली हमारे सामने आए, उन्होंने कहा कि कायनात के वजूद में खुदा की कोई जरूरत नहीं। इसमें जो स्टीवन हॉकिंग है जिनका हम लास्ट टाइम भी कुछ जिक्र कर रहे थे, और वैसे भी ही इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर साइंटिस्ट, अभी तो उनका इंतकाल हो गया, वो जरा दरमियान के आदमी थे, लेकिन जो खास न्यू एथिज्म की जैसे लॉरेंस क्रॉस हैं और इस और बाकी दूसरे फिजिसिस्ट हैं, वो इस तरह के जो आइडियाज हैं उनको बहुत अग्रेसिवली पेश करते हैं। तो तमाम एथिस्ट जो हैं वो सब्सक्राइब नहीं करते इन आइडियाज से, क्योंकि फिजिक्स के अंदर भी ये कॉन्ट्रोवर्शियल है, और वैसे भी जो इनका अंदाजे बयान है उससे बहुत सारे लोगों को इख्तिलाफ रहता है। लेकिन बहरहाल मेन स्ट्रीम जो न्यू एथियज्म है वो एंडोर्स करता है फुली इन आइडियाज को, और लार्ज स्केल तरीके पर इसकी डिसेमिनेशन जारी है। मैं आपको बताऊं कि इवन जो जो चेयर है साइंस के कम्युनिकेशन के लिए, जो स्टीवन हॉकिंग, माफ कीजिएगा, रिचर्ड डॉकिंस को, जो जिस पे वो बहुत देर रहे, और अब एक और जो साहेब है मैथमेटिशियन है, उन्होंने उसको रिप्लेस किए। वो देखें एक मेन स्ट्रीम बड़ी यूनिवर्सिटी की प्रोवाइडेड चेयर है, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि साइंस, क्योंकि हम समझते हैं कि न्यूट्रल है, या साइंस जो है वो ज्यादा से ज्यादा इंडिकेट कर सकती है खुदा के वजूद के बारे में, या कुछ सवालात पैदा कर सकती है खुदा के ना होने के बारे में, तो हम एक्सपेक्ट ये करते थे कि एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है, उसमें एक चेयर है साइंस की कम्युनिकेशन के लिए, तो उससे साइंस कम्युनिकेट होनी चाहिए। लेकिन उससे जो न्यू एथियज्म है, वो जो न्यू एथियस्टिक आइडियाज है, तमाम के तमाम स्पीकर्स इनको बुलाया जाता है, तमाम के तमाम पब्लिकेशन और सब कुछ, तो वो ये न्यू एथियज्म की है। बल्कि जब चेयर वो उसके लिए बातचीत हो रही थी, तो खास तौर से जो स्पॉन्सर थे उनका ये इसरार था कि जो पहला इसका इसके जो जो हमने जिसको चेयर देनी है वो रिचर्ड डॉकिंस होने चाहिए, तो रिचर्ड डॉकिंस ने फिर बहुत अग्रेसिवली उसको फैलाया। तो ये मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड दे रहा हूँ न्यू एथियज्म का, और एथिस्टिक आइडियाज जो आपको नजर आते हैं हर जगह पर फैले हुए, तो ये एक बाकायदा आप समझ लें कि इज्म है, जिसको हम इज्म कहते हैं, कि एक तहरीक है कि एग्रेसिवली साइंस के नाम पर जो एथिस्टिक आइडियाज हैं उनको डिसेमिनेट किया जाए, लोगों तक पहुंचाया जाए, और ये बहुत पहुंच रहे हैं लोगों तक बहुत ताकत से। तो उसमें जरूरी हो जाता है कि जो जिस बात को हम सही समझते हैं उसको वाजे किया जाए। और आप को हैरत होगी कि क्रिश्चियन लिटरेचर बहुत अच्छा है जो न्यू एथिज्म के रिस्पांस में लिखा गया है, लेकिन पाकिस्तान में मुझे रिचर्ड डॉकिंस की तमाम किताबें, क्रिस्टोफर हिचेंस और बाकी लोगों की हर बड़े बुक स्टॉप पर मिल गई, लेकिन क्रिश्चियन जो स्कॉलरशिप है वो अनफॉर्चुनेटली फॉर सम रीजन किसी जगह पर मुझे उसकी मेन स्ट्रीम चीजें नहीं मिली। तो एनीवे ये आप शायद इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि एक नई चीज, एक फैशनेबल चीज है और बड़े तेजी से ये चीज फैल रही है। तो जो कहा जाता है कि वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन, वो जो हमारे मुसलमानों के अंदर एक मेन स्ट्रीम थॉट है कि वो इस्लाम है, ये बात दुरुस्त नहीं है। स्टैटिस्टिक्स सारे शो करते हैं कि वो है इल्हाद, वो है एथिज्म। तो उसकी ये कुछ तमहीद थी उस इस जो एथिज्म है इसकी जो इंटेलेक्चुअल साइड है, प्रोपेगेंडिस्ट साइड, वो रिलीजियस लोग भी जाहिर है कि प्रोपेगेंडा करते हैं, करते रहे हैं हिस्ट्री में, हिस्ट्री दोनों ही की, रिलीजियस लोगों की और नॉन रिलीजियस या इरिलीजियस लोगों की, सेकुलर लोगों की, वो बड़ी भयानक है। यानी ये हमारा कुछ जोर हो गया इस चीज के ऊपर कि तालिबान और ये सारे लोगों को देखकर, जैसे 9/11 के बाद मैंने कहा कि इसने जोर पकड़ा है। तो लेकिन अगर हिस्ट्री को देखा जाए यूरोप के अंदर खास तौर से, कि जो इल्हाद ने या रिलीजियस को खत्म करने के लिए जो कार्ल मार्क्स के फिर उसूलों के ऊपर और इवन इवोल्यूशनरी थ्योरी के उसूलों के ऊपर जो कुछ हिटलर ने किया, स्टालिन ने किया, और इवन चाइना के अंदर जो कुछ रिलीजियस लोगों के साथ होता रहा है या हो रहा है, तो ये दोनों की हिस्ट्री बड़ी भयानक है। हमने ये करना है कि जो इंटेलेक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स हैं, अच्छे आर्ग्यूमेंट्स हैं और अच्छे लोग जिसको पेश करते हैं, ना भी अच्छे लोग पेश करें, लेकिन अगर किसी की बात में कोई जान है, चाहे वो कैसे भी उसको पेश करे, तो उसको उठाएं और उसको हम अच्छे से समझें पहले उसकी बात को कि वो क्या कह रहा है, उसके बाद फिर उस पर अपना एक अगर क्रिटिकल कोई बात बनती है तो उसको बयान करें, नहीं तो उनकी बात को हम कबूल कर लें। तो यहीं से हम आगे बढ़ते हैं जी। आज जैसे कि मैंने बयान किया, इसका दूसरा सेशन है। एक आपको मैं ओवरव्यू दे दूं कि आज की टॉक में हम क्या करने लगे हैं और आगे हम क्या करेंगे। तो आज की टॉक में हम थोड़ा सा रीकैप पेश करेंगे जो कि मुख्तलिफ जो कंटेम्प्रेरी फिजिसिस्ट हैं वो बयान करते हैं कि जो कायनात है ये कैसे वजूद में, इसकी क्रिएशन सागा या इसकी क्रिएशन स्टोरी को जैसे बयान किया जाता है, उसका खास तौर से स्टीवन हॉकिंग ने जैसे उसको पेश किया है, उसको हम बुनियाद बनाएंगे। किसी भी आदमी को बुनियाद बनाया जा सकता था, स्टीवन हॉकिंग की कोई ऐसी इम्तियाजी हैसियत नहीं है, लेकिन जाहिर है कहीं से तो हमने शुरू करना था। और नुएंसेस में फिर हर आदमी के नुएंसेस अपने अपने मुख्तलिफ होते हैं, उनमें हमने नहीं जाना, तो मेन स्ट्रीम पिक्चर कहीं से भी ली जा सकती थी, उसका रीक है। और इस पर जैसे मैंने कहा कि आज हम एक क्रिटिकल कमेंट्री भी करेंगे फिलोसॉफिकल परस्पेक्टिव में। अच्छा, मेरा थोड़ा सा तरीकेकार इसमें यह है कि ताकि हम सब में एक आला इल्मी ज़ौक पैदा हो और चीज़ों को अंदर उतर कर समझने का एक हम तरीका इख्तियार करें, बजाय इसके कि सुपरफिशियल तरीके से तकरीर करके और इमोशनल बातें करके और अपनी बर्तरी जाहिर करके हम चलते बने, तो थोड़ा सा मैं डिटेल में जाना चाहूंगा आप लोगों के साथ। उसमें आप लोगों को भी थोड़ा सब्र करना पड़ेगा, कोई बात समझ में नहीं आती आप लेक्चर के दौरान मुझसे पूछ सकते हैं, आखिर में भी सवालात के लिए हम इंशाल्लाह टाइम रखेंगे। तो आगे जो हम करेंगे, आज के लेक्चर में इतना ही होगा, स्लो होगा, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग आप लोगों के लिए हो सकता है, लेकिन ये जरूरी है कि हम इस एक्सरसाइज में से गुजरें। आगे आने वाले जो लेक्चर्स हैं, अब पता नहीं उनकी तादाद कितनी होती है, लेकिन 2 से 3 लेक्चर्स कम अज कम हमें देने पड़ेंगे। उसमें हम देखेंगे कि ये जो आज हम चीजें डिस्कस करेंगे इसका खुदा के वजूद पर क्या असर पड़ता है, क्या कोई असर पड़ता है या नहीं पड़ता, और हमारा असल में आर्ग्यूमेंट है क्या खुदा के होने के बारे में, और फिर उस आर्ग्यूमेंट की रोशनी में हम देखेंगे कि किस तरह से असरअंदाज होता है ये आइडिया जो क्रिएशन का नया पेश किया गया। ये बिल्कुल नया तो नहीं है, 1960s से 1970s से स्पेकुलेशन जारी थी इस किस्म की, लेकिन अब ये مین اسٹریم پر آیا ہے, اس پر مزید لوگوں نے کام کیا ہے, اور جیسے میں نے آپ کو کہا کہ یہ تیزی سے پھیلا ہے, کیونکہ جو ریئیکشن ہے مذہبی لوگوں کا, جو رد جو مذہبی لوگوں کا سارا رہا ہے حال, وہ ہم نے دیکھا کہ خاص طور سے اسلام کے بارے میں, جیسے رچرڈ ڈاکنز وغیرہ بھی بیان کرتے ہیں کہ خاص طور سے, بلکہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کرسچینٹی پر سارا اپنا زور ڈالا تھا, اصل مسئلہ تو اسلام کے ساتھ ہے. تو 9/11 کے بعد جیسے ایک میگزین نے یہاں جرمنی میں شائع ہوا, اس نے بتایا کہ اس کے بعد یہ بڑی تیزی سے پھیلا اور سارا ہوا, تو رچرڈ ڈاکنز نے بات بھی بیان کر دی خود سے پھر بعد میں کہ یہ ایسے ہی ہوا کہ مجھے جو امپیٹس ہے وہ وہیں سے ملا. تو اینی وے ہم دیکھیں گے کہ خدا کا ہمارا آرگیومنٹ کیا ہے, اور اس آرگیومنٹ میں ہم اکیلے نہیں ہیں, بلکہ ہمارے جو مسیحی بھائی ہیں وہ, اور جو ہمارے یہود بھائی ہیں وہ, ہم ساتھ ساتھ کھڑے ہوں. تو یہ اب وہ جو پرانی لڑائی تھی یا کروسیڈز تھیں ابراہمک ٹریڈیشنز کے درمیان میں, اب یہ اس سے معاملہ کافی یعنی وسیع ہو گیا. کرسچنز, جوز اور مسلمان ایک طرف کھڑے ہوئے ہیں, ان کا خدا ابراہیمی خدا اور دوسری طرف الہاد ہے. اگلی ٹاک میں ایک خاص چیز جو ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ وہ شیئر کی جائے, وہ ہے اسٹیون ہاکنگ کا اور ہارٹل, یہ ڈبل آر نہیں ہے, سنگل آر ہے, سوری, ان کا ایک اور آئیڈیا ہے. آج جو ہم تھیسس دیکھیں گے اس سے الگ, آج کے تھیسس سے بھی وہ پیچھے گئے ہیں, اور انہوں نے جو کائنات جب اپنی بالکل ارلی سٹیجز میں تھی تو وہاں پر ٹائم کا کانسیپٹ ختم کر دیا. تو کیونکہ پاپولر جو کریشن کا ویو ہے, اللہ تعالیٰ جیسے چیزیں بناتے ہیں, تو وہ ایسے سمجھا گیا ہے کہ میں عام فہم لوگوں کی بات, عام سطح کی بات کر رہا ہوں, جو اعلیٰ علمی سطح اس کی بات نہیں کر رہا, وہ ہم دیکھیں گے کہ کیا ہے. لیکن اس میں سمجھا گیا کہ خدا نے وقت کے اندر, یا وقت کی خدا کو ضرورت تھی اور اس کے اندر خدا نے کسی طریقے سے چیزیں کریٹ کی ہیں, تو انہوں نے ٹائم کا کانسیپٹ ختم کر دیا اور کہا ہے کہ اب تو خدا, کسی خدا کے لیے, کسی ڈائٹی کے لیے کوئی ٹائم تو رہا ہی نہیں, تو اب وہ جو اس نے کریشن کرنی ہے وہ ٹائم تو گزرے گا اس کے لیے, تو وہ کریشن ہو نہیں سکتی, تو ارریلیونٹ ہو گیا کسی بنانے والے کا کانسیپٹ. اور وہ جو جس طرف وہ اشارہ کریں گے کہ وہ کائنات کی ارلی اسٹیٹ جو تھی اس کو مان لیا گیا کہ یہ جو ہے یہ آپ سے آپ ہے اور یہیں سے ساری چیزیں پھوٹیں گی, اس کو ہم تفصیل سے دیکھیں گے. اس میں ایک آج جس کو ہم ٹچ کریں گے, چیز کو شروع کر دیں گے, اس پہ ہم بحث کرنا بہت امپورٹنٹ ہے, وہ یہ سمجھنا ہے کہ لاز آف فزکس یا لاز آف نیچر یہ کیا ہے, کیونکہ یہ آپ اکثر سنتے ہوں گے کہ لاز آف نیچر نے یہ کر دیا, قانون قدرت سے یہ آپ سے آپ چیز ہو گئی. تو خدا کا جو آرگیومنٹ ہے ہمارا, وہ کیا آئیدر گاڈ اور لاز آف فزکس, کیا یہ صورتحال بنتی ہے؟ یعنی اگر ہم اپنے آرگیومنٹ کی روشنی میں اس کو دیکھیں, تو ہم یہ اس کو آج دیکھنا شروع کر دیں گے, اور اس کے بعد پھر اس کی مزید تفصیلات بعد میں دیکھیں گے. اور پھر ایک آئیڈیا جو ہے وہ گاڈ ورسز دا ملٹی ورس, کہ خدا نے ایک کائنات کو وجود بخشا, نہیں ایسا نہیں ہے. کہتے ہیں کہ اس طرح کی سینکڑوں بلکہ کروڑوں بلکہ انفینٹ یونیورسز موجود ہیں, اور اتفاق سے ان میں سے ایک میں یہ حادثہ پیش آ گیا کہ جو لاز آف فزکس ہیں وہ اس قسم کے, اس کے سیکنڈری لاز اس کو کہتے ہیں, کیونکہ پہلے لاز تو ہیں وہ جہاں سے ملٹی ورس پھوٹ رہی ہے وہ اس کے بیان کرتے ہیں, وہ بعد میں سارا دیکھیں گے. تو کائناتیں بہت سی ہیں, تو اتنی ساری کائناتوں میں سے ایک کائنات کے اندر یہ اتفاقی طور پر حادثہ پیش آ جانا, اور وہ ساری چیزیں یا لاز آف فزکس ایسے ہو جانا کہ زندگی وجود میں آ جائے, یہ کوئی ایسا حیرت انگیز چیز نہیں ہے. وہ یہ اس طرح سے اس کو بیان کرتے ہیں جیسے کہ جو ایک ریولوشن ہوا کاسمالوجی کے اندر, پہلے لوگ سمجھتے تھے کہ ارتھ جو ہے وہ یونیورس کے سینٹر میں ہے, تو اس کے بعد پھر وہ جو ریولوشن ہوا پولش جو سائنٹسٹ تھے ان کے تحت, اور اس سے پہلے ویسے اس کے ملتے ہیں آپ کو ہسٹوریکلی, ظاہر ہے نام کسی کا مشہور ہو جاتا ہے لیکن ہسٹری میں پائے جاتے ہیں اس کے پریکرسرز یا وہ آئیڈیا فلی ان اینی وے. تو وہ آئیڈیا یہ تھا کہ یونیورس جو ہے وہ اس کے سینٹر میں زمین نہیں ہے, اور یہ زمین کو خاص ایک چیز نہیں ہے بلکہ ایک عام سا پلانٹ ہے, اس میں حادثاتی طور پر اگر زندگی پیدا ہو گئی تو زندگی ابھی بھی اس کی تلاش جاری ہے, اور مختلف جگہوں پر وہ اور بھی پائی جا سکتی ہے. تو یہ कहा गया कि इसकी ये कोई इतनी हैरत अंगेज बात नहीं है कि हम सेंटर ऑफ द यूनिवर्स हैं और हम स्पेशल हैं। तो इसी तरीके से इसी कॉन्सेप्ट को लेकर ये कहा गया कि बहुत सारी अगर कायनातें हैं तो उनमें से एक कायनात के अंदर ऐसा हो जाना इत्तफाकी तौर पर ये कोई बड़ी बात नहीं। तो ये बेसिकली प्रोबेबिलिटी की यहाँ पर बात हो गई है। प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को भी तफसील से वहां पर देखेंगे, जो कहा जाता है कि बाय चांस ऐसा क्यों नहीं हो सकता, ऐसा हुआ है। फिर एक बहुत अहम सवाल है जिसको स्टीवन हॉकिंग ने भी उठाया, लेकिन हम इसको अगर आप लोगों ने चाहा तो आप लोगों का साथ रहा तो हम देखेंगे। रिचर्ड डॉकिंस ने द गॉड डिल्यूजन के अंदर जैसे इसको उठाया कि अगर मान लिया कि ये जो हमारी कायनात है इसका खालिक खुदा है, तो खुदा का खालिक कौन है? तो ये समझा जाता है कि ऐसा क्वेश्चन है कि जो बिल्कुल ही जो थियोलॉजिकल जितना केस है उसको बिल्कुल उलट कर रख देता है। ये एक उन थियोलॉजियंस को ये लाजवाब कर देता है। तो हम इसको भी देखेंगे। एनीवे विदाउट मच एडो हम आज का अपना जो सिलसिला है उसको बाकायदा शुरू करते हैं। तो ये जो स्टोरी है जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये है सेल्फ क्रिएशन यूनिवर्स की फ्रॉम नथिंग। इसको ऐसे बयान किया जाता है कि यूनिवर्स ने अपने आप खुद ही से अपने आप को वजूद बख्शा, अपने आप को पैदा किया और नथिंगनेस से ये खुद बखुद वजूद में आ गई। किसी क्रिएटर की इंटरवेंशन के बीच में जरूरत नहीं है। यहाँ पर जो थॉमस अक्वाइनस और बाकी लोग पेश करते हैं ना खुदा के वजूद के बारे में, मुख्तलिफ आर्ग्यूमेंट्स हैं। तो एक आर्ग्यूमेंट ये है कि जो कॉज इफेक्ट कॉज इफेक्ट कॉज इफेक्ट का सिलसिला है, या आप कह लें कि हम इफेक्ट से कॉज तक जाते हैं कि ये असर है इसकी, इसका पीछे को मौसर होगा। पीछे जाते 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 साइंस में हम ऐसे ही करते हैं ना कि जो पानी है वो ऐसा क्यों है, उसकी फिर तहलील करते हैं और देखते हैं कि इसके मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स हैं, वो मॉलिक्यूल्स कहाँ से आ गए, वो जो हाइड्रोजन है वो बनी थी कायनात के बिल्कुल आगाज ही में, जो जब एटम्स वगैरह आपस में जो न्यूक्लियाई है मुख्तलिफ न्यूक्लियस हैं, जो न्यूक्लियाई उनकी जमा, वो जब बने और उनके गिर्द इलेक्ट्रॉन्स ने हरकत करना शुरू की, रिवॉल्व करना शुरू किया, तो वहां से ये सिंपल जो एलिमेंट है हाइड्रोजन का वो आ गया। ऑक्सीजन कहाँ से आई? ये ऑक्सीजन बनी जी बाद में जो सुपरनोवी होते हैं या सितारे फटते हैं उनके अंदर, सो इस तरह करते करते पीछे चलते जाते हैं। तो पीछे चलते चले जाते हैं तो आप देखेंगे कि किसी न किसी जाकर ये जगह जाकर ये सिलसिला रुकना होता है ना। तो जहां पे सिलसिला रुक जाता है वहां से आर्ग्यूमेंट ये किया गया कि उसके पीछे जो कॉज है पहली कॉज वो खुदा को होना चाहिए। तो यहां पर बेसिकली असल में वो इसको इस फिलोसॉफिकल जो पॉइंट है उसको काउंटर कर रहे हैं कि कायनात के वजूद में किसी खुदा की कोई जरूरत नहीं। तो इसको मैं दोबारा दोहराने के लिए पढ़ देता हूँ ताकि आपके जहन में ताजा हो जाए। ये स्टीवन हॉकिंग और मिलोडिनो की ये किताब है, उसमें से मैं इसको ले रहा हूँ। ये कहीं से भी लिया जा सकता था। देखें यहाँ पर एलन गूस है, इन्होंने ये नथिंग पर तो ज्यादा बहस नहीं की, लेकिन जो इन्फ्लेशन है बाद में भी हम देखेंगे वो क्या है, उसका उसके ये फादर हैं, ये विलिंकन हैं, ये क्रिएशन आउट ऑफ नथिंग पर बिलीव रखते हैं और ये उसको बयान भी करते हैं, लेकिन ये एक सॉफ्ट यानी कॉर्नर रखते हैं थियोलॉजिकल जो लोग हैं उनके लिए भी। स्टीवन हॉकिंग कदरे एग्रेसिव थे लेकिन मुख्तलिफ लोगों की तबीयतें होती हैं, ये आप देखेंगे बहुत मशहूर ये हैं जी विक्टर जे स्टेंगर, बहुत मशहूर ये फिजिसिस्ट हैं। इनकी एक किताब है गॉड द फेल्ड हाइपोथेसिस, ये भी इसी में बिलीव रखते हैं। ये आपको एटकिंस नजर आ रहे हैं, ऑक्सफर्ड जो केमिस्ट हैं वो भी इसी तरह की मिलती जुलती बात बयान करते हैं, और लॉरेंस क्रॉस तो बिल्कुल ही कमोबेश वही बात करते हैं जो स्टीवन हॉकिंग और मिलोडिनो ने ये बात पेश की है। इनकी जो स्टीवन हॉकिंग की लास्ट जो कंप्लीट किताब है ये द ग्रैंड डिजाइन, इसके अंदर बेसिकली इन्होंने इसको पेश किया। इनकी पुरानी किताबें जो है उन पर बेस करते हुए इन्होंने और अपने जो साइंटिफिक पेपर्स हैं जाहिर है तो ये चीज बयान की है, लेकिन ये चीज इतने सेल्फ एविडेंट तरीके से उन्होंने बयान नहीं की, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड तरीके से बयान की है। तो इस पूरे थीसिस को खोलने के लिए आपको बहुत सारे दूसरे फिजिसिस्ट को देखना पड़ता है, बहुत सारी स्टीवन हॉकिंग की टेक्निकल चीजें देखनी पड़ती हैं, बहुत सारी उनकी पुरानी किताबें देखनी पड़ती हैं। तो आज जो मैं पिक्चर पेश करूंगा आपके सामने, जो आपको लगेगा कि ये मतलब इन अ नटशेल सब सामने आ गया और बहुत आसान बात है, इसके पीछे बड़ी एफर्ट है। तो ये एक, आप समझ लें कि एक खिदमत थी, होती है इल्म की, कि आप किसी आदमी की चीजों को इकट्ठा करके तो उनको आप प्रेजेंट कर दें ऐसे कि वो लोगों के सामने आ जाए। तो इसमें यानी ये मैं बात इसलिए बयान कर रहा हूँ कि बाज़ औक़ात लोग कहते हैं कि ये मतलब बात कोई इतनी खास नहीं है, और ये बात मतलब आपने इसको रिसर्च करते हुए बहुत टाइम लगा दिया। तो वो इसमें टाइम अंदर उतर कर लगाना पड़ता है, जब आपने चीजों को समझकर और फिर उनको जैसे कि वो हैं पेश करना होता है। तो उसमें फिर ये सारा बैकग्राउंड है कि ये 1970 की दहाई में शुरू हुआ और करते करते ये हाइपोथेसिस जो है वो अपने क्लाइमेक्स को पहुंचा। अभी भी क्लाइमेक्स को खैर नहीं पहुंचा, लेकिन भारत जैसे ये है तो उसके लिए काफी एफर्ट करनी पड़ती है। तो स्टीवन हॉकिंग ने इसको ऐसे बयान किया इन अ नटशेल के बिकॉज देयर इज अ लॉ सच एज ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटी जैसा एक कानून मौजूद है, साइंस का कानून कह लें, कुदरत का जो भी, इसको लॉ ऑफ नेचर एंड लॉ ऑफ साइंस, क्योंकि वो मौजूद है, द यूनिवर्स कैन एंड विल क्रिएट इटसेल्फ फ्रॉम नथिंग। यूनिवर्स जो है वो अपने आप को नथिंगनेस से खुद ब खुद क्रिएट कर सकती है, बल्कि उसने किया है। ये जो विल, यहाँ विल ऑफ नेसेसिटी है ना, कि लाजमी ऐसा हुआ है, इसको आप मुझे अगर याद दिला दीजिएगा तो हम बाद में किसी वक्त जेरे बहस ले आएंगे। इसके पीछे पूरी जो रिचर्ड फाइनमैन है, उनकी बड़े फिजिसिस्ट हैं, यानी चीदा चीदा फिजिसिस्ट हैं जो कि इतने पॉपुलर हैं, तो उनकी जो क्वांटम थ्योरी की इंटरप्रिटेशन है वो उसका इसमें अमल दखल है। वो असल में इन नटशेल कि जो भी चीज क्वांटम लेवल पर हो सकती है वो लाजमन हो जाती है। तो ये इसलिए उन्होंने इन्होंने यहाँ पर स्टीवन हॉकिंग ने इसको विल ऑफ नेसेसिटी भी बयान कर दी, कि यूनिवर्स अपने आप को क्रिएट कर सकती है, तो उसने ऐसा किया भी है। आगे बयान करते हैं स्पॉन्टेनियस क्रिएशन, कि यक बयक कोई चीज वजूद में आ जाए, दफातन कोई चीज वजूद में आ जाए, इज द रीजन देर इज समथिंग रादर देन नथिंग। ये क्वेश्चन है ना, जो कि ये बहुत सारे फिजिसिस्ट जो हैं वो उठाते रहते हैं, बहुत सारे लोग उठाते रहते हैं, बहुत फलसफे में बुनियादी सवाल है, व्हाई इज देयर समथिंग रादर देन नथिंग, क्यों कोई चीज मौजूद है। ऐसा भी तो हो सकता था कि कुछ ना होता, तो कोई चीज क्यों मौजूद है। तो उसका जवाब स्टीवन हॉकिंग इन नटशेल यहाँ पर ये दे रहे हैं कि यक बयक दफतन क्रिएशन, यक मुश्त एक चीज वजूद में आ गई, कुछ भी नहीं था और अचानक एक चीज वजूद में आ गई। ये रीजन है कि हम मौजूद हैं, तमाम चीजें मौजूद है। द यूनिवर्स डिडंट नीड अ गॉड टू बिगिन, ये वही मैंने आपको कह दिया ना कि जो फर्स्ट कॉज वाली बात है, असल में ये वो अंडर अटैक है। और आप देखेंगे कि जो हम आर्गूमेंट पेश करेंगे वो असल में फर्स्ट कॉज को शामिल करेगा अपने अंदर, लेकिन वो असलन खुदा के पहला मुहर्रक होने का वो आर्गुमेंट नहीं होगा, तो वो हम बाद में देखेंगे। यहाँ पर हम इनकी बात समझने की पहले कोशिश कर रहे हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि यूनिवर्स को किसी खुदा की जरूरत नहीं थी, लॉ ऑफ ग्रेविटी मौजूद था, तो स्पॉन्टेनियस क्रिएशन हुई, उसके तहत यूनिवर्स आपसे आप वजूद में आ गई। ये बात जरा थोड़ी सी आगे की बात है, इससे भी वो पीछे जाते हैं और वो बयान करते हैं, ये देखें यहाँ पर क्वांटम थ्योरी को यहाँ पर बीच में वो लेकर आते हैं। ग्रेविटी एंड क्वांटम थ्योरी कॉज यूनिवर्सेस टू बी क्रिएटेड स्पॉन्टेनियसली आउट ऑफ नथिंग। यहाँ पर ग्रेविटी का भी जिक्र कर दिया और क्वांटम थ्योरी का भी जिक्र कर दिया। ये दो अलग अलग क्रिएशन की एपिसोड्स हैं, ये इपोक हैं, या उस स्टोरी के अंदर दो अलग अलग स्टेजेस हैं। इनको अभी हम दोनों को खोल कर देखते हैं। तो पहले क्वांटम फिजिक्स के तहत ये कायनात कैसे खुद ब खुद अदम से वजूद में आ गई, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। और उसके बाद ग्रेविटी ने बाद में क्या किरदार अदा किया, तो हम इसको शुरू करते हैं। ये हमने पहले भी देखा था लेकिन इसको दोबारा दोहरा देते हैं। देखिए वो बयान करते हैं कि सबसे पहले एक प्रिमिटिव क्वांटम वैक्यूम मौजूद था, जिसको वो कहते हैं कि नथिंग, कि कुछ भी नहीं था। अच्छा, इस पर आप नथिंग पर अभी थोड़ी देर में बहस करेंगे। ये मैं आपके सामने वैसे इसको जूं ही इस आर्गुमेंट को खोलना शुरू करूंगा तो जाहिर है कि आप लोगों के जहन में सवालात पैदा होना शुरू हो जाएंगे और एक क्रिटिकल थिंकिंग आपके अंदर जनरेट होगी, क्योंकि ये इतना ऑब्वियसली इसको ऐसे बयान नहीं किया जाता। मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। वो कहा जाता है कि कायनात खुद ब खुद नथिंग से वजूद में आ गई। असल में वो नथिंग जो है वो फिजिक्स के टर्म में क्वांटम वैक्यूम को नथिंग बोलते हैं। क्वांटम वैक्यूम के हमने इस पे बड़ी तफसील से बहस की थी। इन अ नटशेल वो ये है कि आप छोटी से छोटी से छोटी, साइंस में हम यही करते हैं ना कि बड़ी चीजों को पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और उसके बाद उसकी तहलील करते चले जाते हैं, और जैसे पार्ट से चीजें फिर फूटती हैं होल, उसको हम देखते हैं, इसको रिडक्शन कहा जाता है। अभी साइंस में खैर बहुत सारी एक रेवोल्यूशन ये भी है, नया फिनोमिनन है कि नहीं आप इस तरह से तहलील ना करें बल्कि ऑन द होल सिस्टम को भी देखें, सिस्टम की भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि ऐसे स्टडी नहीं की जा सकती। लेकिन भारत हम क्या करते हैं, क्लासिकल तरीके पर तहलील करते चले जाते हैं, तो आप कहाँ तक पहुंचेंगे यूनिवर्स में, आप छोटी से छोटी से छोटी से छोटी चीज उसको करते जाए तो आप पहुंचेंगे स्पेस तक, खाली स्पेस तक। और वो स्पेस क्या होगी, प्रोटॉन्स को जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स बनाते हैं उनके दरमियान में जो स्पेस होती है। अब आप प्रोटॉन का या इलेक्ट्रॉन्स का तस्वुर भी नहीं कर सकते अपने जहन में, ये जो एक आपको एक्सक्लेमेशन साइन के नीचे डॉट नजर आ रहा है, इसका भी बिलियंथ 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 हिस्सा, ये उस लेवल पर हम बात करें। और ये मैंने बिलियंथ 5-6 दफा ये ऐसे नहीं बोला, ये वाकई इतना इतना इसका स्केल है। तो उस पर आप जाते हैं तो आप देखते हैं कि स्पेस जो है, मैंने आपको बताया कि जो क्वार्क्स हैं जो कि प्रोटॉन को बनाते हैं एक एटम के न्यूक्लियस के अंदर, उस स्पेस को जब आप देखते हैं तो वो स्पेस जो है वो कभी भी एम्प्टी नहीं होती, वो एम्प्टी हो ही नहीं सकती। उस स्पेस के अंदर क्या हो रहा होता है, कुछ एलिमेंट्री पार्टिकल्स जो हैं, बिल्कुल बेसिक जो पार्टिकल्स हैं, वो बन रहे होते हैं टूट रहे होते हैं, बन रहे होते हैं टूट रहे होते हैं। इसको कहते हैं पार्टिकल एंटी पार्टिकल पेयर या मैटर एंटी मैटर पेयर। ये वो नहीं है इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन आपको पता है ना कि एक बेसिक जो पार्टिकल्स हैं उनमें से एक है, यानी प्रोटॉन्स वगैरह, तो फिर क्वार्क्स वगैरह से मिलकर मैंने, तो इसलिए मैंने इलेक्ट्रॉन का जिक्र कर दिया। लेकिन बहरहाल होता है क्या कि आप स्पेस को मैग्निफाई करते 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 इतनी छोटी स्पेस पर आप चले गए हैं कि वहां पर कुछ भी नहीं है, एम्प्टी स्पेस है। उस एम्प्टी स्पेस के अंदर वो कभी भी एम्प्टी नहीं होती, ना हो सकती, तभी हम इस पर बहस करते हैं। उसको जो आप देखते हैं तो उसके अंदर पार्टिकल जो है वो बन रहे टूट रहे होते हैं, बन रहे टूट रहे होते हैं, बन रहे टूट रहे होते हैं, ठीक है। इसकी मैं कुछ आपको मिसालें भी देता हूँ। ये यहाँ पर जैसे बबल बाथ होता है, बाथ आप लेना तो उसमें जो टब के ऊपर बबल्स होते हैं इस तरह बन रहे टूट रहे होते हैं, उसी तरीके से पार्टिकल्स बन रहे टूट रहे होते हैं। तो आप देखें कि जो, अच्छा मैं इसमें आपको जरा इसकी मजीद वजाहत कर दूं अगर कोई जरूरत है तो, नहीं तो उसको फिर पीछे ले जाते हैं। स्पेस को हमने छोटा कर दिया और आपको बता दिया वो कभी भी एम्प्टी नहीं होती। तो अच्छा क्या चीज करार पाएगी, वो ये कि यूनिवर्स के अंदर जो है वो हम समझते हैं कि ये एम्प्टी स्पेस है, ये तो एक बड़े लेवल पे मैं कह रहा हूँ एम्प्टी स्पेस है, इसमें तो एयर मॉलिक्यूल्स है, पता नहीं क्या कुछ है। आप बिल्कुल इसको ले जाते हैं, एयर टाइट कर देते हैं चीजों को, इसमें एयर मॉलिक्यूल्स को भी नहीं आने देते, बिल्कुल छोटे लेवल पर चले जाते हैं, क्वांटम स्केल के ऊपर चले जाते हैं, वहां पर भी आपको एम्प्टी स्पेस नहीं मिलती, स्पेस कभी भी एम्प्टी नहीं होती। तो हाँ, वो ये कहते हैं इसकी बेस के ऊपर कि नथिंग का जो वजूद है ना वो हो ही नहीं सकता। फिजिक्स ने नथिंग के वजूद को इररिलेवेंट, या आप इररिलेवेंट क्या कहेंगे, बल्कि उसको बता दिया है कि ये हो ही नहीं सकता, वो उसकी पॉसिबिलिटी को खत्म कर दी। तो अब नथिंग को हमें रीडिफाइन करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट थिंग टू नथिंग क्या होगी, ये नथिंग रीडिफाइंड क्या होगा, वो होगा बहुत ही छोटे लेवल के ऊपर एम्प्टी स्पेस। बड़े लेवल पे एम्प्टी स्पेस आप कह सकते हैं लेकिन उसको एम्प्टी करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, वो बहुत एनर्जी चाहिए उसके लिए, इसलिए छोटे लेवल के ऊपर एम्प्टी स्पेस। और उसके अंदर ना कोई एयर मॉलिक्यूल्स, कुछ भी नहीं होगा, वो एम्प्टी स्पेस होगी, और उस एम्प्टी स्पेस के अंदर वो कभी भी एम्प्टी नहीं होगी बल्कि पार्टिकल्स एंटी पार्टिकल्स दे वुड बी क्विवरिंग इन एंड आउट ऑफ एग्जिस्टेंस, बन रहे हैं टूट रहे हैं, बन रहे हैं टूट रहे हैं, अचानक से बन रहे हैं, अचानक से टूट रहे हैं, कोई पता नहीं चलता उसका। इसी चीज को स्टीवन हॉकिंग ने और बाकी लोगों ने कायनात के, जब बहुत ही छोटे साइज की कायनात थी उस पर इसका इंतबाक किया है, इसको अप्लाई किया है, और ये लॉजिकल एक एप्लीकेशन है और वो बिल्कुल ठीक एप्लीकेशन है, क्योंकि जब हमारा जो बिग बैंग को आप देखते हैं कायनात फैलती चली जा रही है, तो इसको स्क्वीज करना शुरू करें तो देखें शुरू में क्या होगा, बिल्कुल एक एक नुक्ते के अंदर समा जाएगी, बल्कि नुक्ते से भी छोटे बिलियन 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 हिस्से के। तो उसके अंदर ये हो रहा होता है स्पेस के साथ। तो उन्होंने इसको देखकर हाइपोथेसाइज ये किया है कि इसी तरीके से कायनात शुरू हुई होगी। बल्कि एक प्रिमिटिव, ये क्वांटम वैक्यूम को आप समझे प्रिमिटिव स्पेस होगी, क्वांटम वैक्यूम इसी को बोलते हैं जो मैंने आपको बता दिया है कि इतने छोटे लेवल पर एक स्पेस और उस स्पेस के अंदर एनर्जी का वजूद होना और एनर्जी से पार्टिकल्स फूटना। वो एनर्जी क्या होती है, वो स्पेस की प्रॉपर्टी होती है एनर्जी। ये बड़ा एक एक लतीफ नुक्ता है और बहुत मुझे पसंद आया, और ये बिल्कुल ऐसे ही है कि एनर्जी असल में स्पेस की प्रॉपर्टी है। ये जो प्रोफेसर एडगर एंड्रयूज हैं वो हमारे कोर्स में तशरीफ लाए थे, तो उन्होंने इसको इस पर बहस की थी, तो बहुत अच्छा ये नुक्ता है और बिल्कुल सही बात है कि स्पेस जहां मौजूद होगी वहां स्पेस के अंदर इनहेरेंट एनर्जी मौजूद होगी, उस एनर्जी को निकाला नहीं जा सकता स्पेस से। ठीक है, तो शुरू में क्या थी, इन द बिगिनिंग देयर वाज स्पेस, बहुत छोटे लेवल पर स्पेस के अंदर अपनी इनहेरेंट एनर्जी मौजूद थी, उस एनर्जी की वजह से ये क्वांटम पार्टिकल्स ये एग्जिस्टेंस में आ रहे और गायब हो रहे थे। ठीक है, इसको हम बुनियाद में जाते हैं, कहते हैं ये नथिंग का नया कॉन्सेप्ट है, ये असल में वहां से कायनात फूटेगी, और एक कायनात नहीं फूटेगी, जैसे ये बबल्स फूट रहे हैं बहुत सारे, ये बहुत सारी कायनातें फूटेंगी। स्टीवन हॉकिंग इसको ऐसे बयान करते हैं कि ये जो बबल्स है ना, जैसे ये बनते हैं और फिर फट जाते हैं, ऐसे ही है ना, जब आप बांस लेते हैं ये पानी से बुलबुले बनाते हैं तो वो गायब हो जाते हैं, ज्यादातर फट जाते हैं, तो ये ऐसे ही हो रहा होता है कि यहाँ पर ये हमेशा दो पार्टिकल और एंटी पार्टिकल पेयर बनता है। पार्टिकल एंटी पार्टिकल पेयर क्या करते हैं, एक दूसरे को जो ही एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं एनाइलेट कर देते हैं, खत्म हो जाता है उनका वजूद। लेकिन यहाँ पर ये पिक्यूलर कंडीशंस थी, बहुत खास कंडीशंस थी कि 1 बिलियंथ वो बयान किया जाता है जो एंटी पार्टिकल पेयर्स पैदा हो रहे थे उनमें 1 बिलियन प्लस 1 मैटर पार्टिकल्स पैदा हो रहे थे, तो वो एक्सेस में आ गए मैटर पार्टिकल्स थोड़े से, और वो मैटर पार्टिकल्स फिर उन्होंने अचानक से फूलना शुरू किया, और अचानक से फूलने की वजह से वो एनाइलेट नहीं हुए, और वो जो फूल गए और फूलते चले गए वो उस फूलने से पूरी एक कायनात वजूद में आई, इसी तरह उसके फूलने से दूसरी कायनात वजूद में, तीसरी चौथी पांचवी, तो हमारी कायनात भी इसी तरीके से बहुत सारी कायनातों में, मैंने मल्टीवर्स का आपको बताया कि मल्टीवर्स से मुराद ये कि बहुत सारी कायनात है, इन्फिनिट नंबर ऑफ इनफैक्ट यूनिवर्सेस वो वजूद में है, तो हमारी कायनात भी इसी तरीके से वहां से वजूद में आई नथिंगनेस से। उसके बाद क्या हुआ, ये एक बिग बैंग के लिए भी एक सवालिया निशान था, और ये इस हाइपोथेसिस को भी ये चीज चाहिए कि ये कायनात यानी बची क्यों, इसमें हुआ क्या, ये बच इसलिए गई, मैंने आपको कहा ना कि एनाइलेट हो जाती है ये मैटर एंटी मैटर पार्टिकल जो है वो एनाइलेट कर देते हैं दूसरे को, तो ये बची कैसे, ये बची एक तो इस वजह से कि ये इसका जो एंटी मैटर पार्टिकल है वो, यानी अगर आप जैसे मैंने कहा ना कि 1 बिलियन एंड 1 मैटर के पार्टिकल्स थे और 1 बिलियन पार्टिकल्स थे एंटी मैटर के, जो एक जायद पार्टिकल है, अब वो अनाइलेट होने से उसका चांस है कि वो बच जाएगा क्योंकि इतने पार्टिकल्स नहीं, लेकिन वो फिर भी मसला ये है कि वो किस मतलब आप इमेजिन करें ना कि इस तरह के बबल्स हों, बेशक कुछ पार्टिकल जो हैं वो एक्सेस में मौजूद हों 1 बिलियन के अंदर एक, लेकिन वो पार्टिकल्स यानी अपना वजूद बरकरार नहीं रख सकेंगे क्योंकि उनके इर्द गिर्द हर जगह के ऊपर एंटी मैटर पार्टिकल्स हैं, तो वो कभी ना कभी सूनर और लेटर टकराएगा और खत्म हो जाए, चाहे एक्सेस में भी है तब भी, आप इसको इमेजिन करें ना अपने जहन, या इसको बल्कि फिजिक्स में आप कह सकते हैं कि 10-12 शायद पीछे बच जाए वो, जिसको आप कहते हैं कि वो हो जाता है क्या उसको बोलते हैं, जो एक्विलिब्रियम कंडीशन होती है उसके तहत, लेकिन एनीवे इसको हम एक साइड पर रखते हैं, हम ये आगे की बात को देखते हैं कि एनाइलेट, ये इसकी एक और वजह है कि एनाइलेट क्यों नहीं हुआ, उसकी वजह ये है कि ये तेजी से फैल गया, तो जो एंटी मैटर पार्टिकल्स है वो तो बहुत छोटे से रह गए, वो फूले नहीं, इसमें स्वेलिंग हो गई। अच्छा, ये स्वेलिंग, ये फूला अचानक से इतनी तेजी से कैसे फूल गया, तो इसके अंदर वो बयान करते हैं कि ये जो इस तरीके से जो चीज वजूद में आ रही थी वो एम्प्टी स्पेस थी, उस एम्प्टी स्पेस के अंदर एनर्जी मौजूद थी उसकी प्रॉपर्टी के तौर पर, जैसे मैंने आपको कहा, तो वो जो एनर्जी मौजूद थी वो उसका एक पैच उस एनर्जी का हमें जो आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी है और बाकी फिजिक्स की भी जो चीजें हैं वो हमें बताती हैं कि उस उसके अंदर एक एनर्जी का छोटा सा पैच था, उसको आप मैटर कह लें, मटेरियल कह लें, जो भी कह लें, वो बहुत ही गैर मामूली चीज थी। वो उसने क्या किया, उसके अंदर एक पेक्यूलर प्रॉपर्टी थी, बहुत ही उसकी खास प्रॉपर्टी थी। वो प्रॉपर्टी ये थी कि देखें, मैटर का कोई भी जो जो अभी का हमारे सामने है, जैसे कि मैटर जिस हालत में है, वो क्या करता है, वो दूसरे मैटर के पार्टिकल को या मैटर के कोई आप सितारों का पार्टिकल से ऊपर चले जाएं, ज्यादा आसान हो जाती है बात समझनी। जैसे सूरज है और जमीन है, तो वो उनके दरमियान में वो एक कशिश होती है, कशिश की कुव्वत होती है। ये मैं न्यूटन के उसमें बयान कर रहा हूं ताकि बात सादा रहे, न्यूटन की जो ग्रेविटी की थ्योरी थी, तो इनमें कशिश होती है। तो ये जो गैलेक्सीज भी हैं, सोलर सिस्टम है, स्टार्स वगैरह भी हैं, ये उस कशिश के तहत एक दूसरे के इर्द गिर्द घूमते हैं, तो ये एक किस्म की ग्रेविटी सीमेंट का काम करते हैं। ये इस वक्त जब कायनात बहुत छोटी थी और एक्सट्रीम कंडीशंस थी, तो आइंस्टाइन की जो जनरल रिलेटिविटी है वो ये प्रिडिक्ट करती है कि उस वक्त जो ये ग्रेविटी है ना, इसको अट्रैक्टिव फोर्स के तौर पर काम नहीं करना चाहिए, बल्कि ये एक अकली आप समझ लें कि इस्तेमाल है, बल्कि उसको रिपल्सिवली एक्ट करना चाहिए। ग्रेविटी चीजों को जोड़ती है, ये चीजों को बाहर की तरफ फेंकती है, ये चीजों के इंफिजार का बायस बनती है। ग्रेविटी सो टू स्पीक अगर इम्प्लोड करती है चीजों को या करीब लेकर आती है, तो ये एक्सप्लोड करती है बहुत बड़े धमाके से, ये जो भी मटेरियल है ये चीजों को बाहर की तरफ फेंकता है। इसकी ये पेक्यूलर प्रॉपर्टी है। तो एनर्जी मौजूद थी, उसकी ये पेक्यूलर प्रॉपर्टी थी। एनर्जी कौन सी है, ये स्पेस ही की एनर्जी है। वो इस कंडीशन के अंदर, इस स्टेट के अंदर, एक्सट्रीम स्टेट के अंदर रिपल्सिव ग्रेविटी का उसने काम किया। तो रिपल्सिव ग्रेविटी का उसने काम किया, एक तो ये उसकी पेक्यूलर प्रॉपर्टी थी, जिसकी वजह से ये जो बनी थी ना, जो भी चीज छोटी सी बबल के तरीके पर हमारी कायनात, ये फूलना शुरू हो गई, ये मैसिव एक्सपेंशन। अभी बिग बैंग नहीं हुआ, बिग बैंग नहीं हुई, ये बिग बैंग से पहले बहुत तेज एक्सपेंशन है। बिग बैंग में जो आपको एक्सपेंशन नजर आती है, वो इसी के मरहूने मिन्नत है, इसी की वजह से वो फिर स्लो होती 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 गई और फिर अभी दोबारा फास्ट हो गई है। उसकी वजह भी इसी किस्म का रिपल्सिव ग्रेविटी मैटर है, जो कि पहले से मौजूद है, जिसको डार्क एनर्जी कहा जाता है। अभी हम वहां पर नहीं जाएंगे, बाज हजरात ने इस तरफ इशारा किया था तो मैंने जिक्र कर दिया लास्ट टाइम। तो ये अब क्या होगा कि ये फूलेगा, ये बहुत तेजी से स्पेस को फैलाने का, ये एक्सप्लोर करने का, जैसे बलून होता है ना, उसकी एनालॉजी आप जहन में रखें कि बलून को फुलाते हैं ना, उसको आप ब्लो अप करते हैं तो वो फैलता है, तो उसी तरीके से इसने ब्लो अप किया उसको, कायनात की स्पेस को। अच्छा, दूसरी पेक्यूलर प्रॉपर्टी इसकी ये थी कि सिर्फ कायनात को ब्लो अप नहीं किया, बल्कि ये जो ना होने के बराबर रिपल्सिव ग्रेविटी मैटर था यहाँ पर, या जो एनर्जी थी ना होने के बराबर, अच्छा ये एनर्जी थी काफी ज्यादा, यानी जितनी अभी चांद के जो जो अंदर जितनी एनर्जी है, मैटर में एनर्जी होती है ना, इक्वल एम सी स्क्वायर, तो उतनी इसमें एनर्जी थी। लेकिन इसने क्या किया, ये जब जब इसने एक्सप्लोजन किया, तो उस एक्सप्लोजन में, आम एक्सप्लोजन में देखें क्या होता है, जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो बिखर जाते हैं और डाइल्यूट होते हैं। इसने ये किया कि जब ये फैला, तो फैलते साथ ही इसने ये डाइल्यूट नहीं हुआ, बल्कि इसने अपनी डेंसिटी को बरकरार रखा। उसका मतलब ये है कि मैसिव सेल्फ रेप्लिकेशन हुई, ना सिर्फ ये कायनात को एक्सप्लोर करने का बायस बना, बल्कि कायनात में तमाम मैटर पार्टिकल जो आपको अभी नजर आते हैं, चांद की तो कोई हैसियत नहीं है ना कायनात के अंदर जितना मैटर मौजूद है, तो ये मैटर पार्टिकल्स कहां से आ गए, ये इस रिपल्सिव ग्रेविटी मैटर ने इनकी थ्योरी के तहत उसको पैदा किया। और किस तरह पैदा किया कि अपने आप को रिप्रोड्यूस किया उसने। आम मैटर बिल्कुल भी ऐसा नहीं करता है, साइंस फिक्शन लगती है आम मैटर, मैंने बता दिया आपको कि आम मैटर तो डाइल्यूट हो जाता है, डेंसिटी अपनी बरकरार नहीं रखता है। आप एक भारी चीज को उसकी स्पेस इंक्रीज करना शुरू कर दें, तो उसकी डेंसिटी जो है मैस पर यूनिट वॉल्यूम, वो जाहिर है कि स्पेस के रिलेटिवली वो लेस डेंस होता चला जाए। यानी आप इसकी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे बच्चे च्युइंगम को फैलाते हैं, खैर वो एनालॉजी इतनी ठीक तो नहीं है, लेकिन जैसे च्युइंगम को फैलाते हैं तो वो डाइल्यूट होती है। अब आप ये तसव्वुर करें, च्युइंगम को फैलाते चले जाते हैं, नई च्युइंगम वजूद में आना शुरू हो जाती है। ये हुआ यहाँ पर। अच्छा, तो ये कैसे हो गया, एनर्जी यानी हमें पता है, लास्ट टाइम ही हमने देखा था कि जो थर्मोडायनेमिक्स का लॉ है कि एनर्जी कंजर्वेशन का, कि एनर्जी मौजूद होती है, नई एनर्जी को ना बनाया जा सकता है ना ही मौजूद एनर्जी को खत्म किया जा सकता है। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर तो एक छोटा सा ये सेल्फ रेप्लिकेटिव ग्रेविटी मैटर या एनर्जी जो भी मौजूद थी, वो कैसे एनर्जी एनर्जी कहाँ से आ गई उसको फैलाने के, इसको ये एलन गूथ जो फादर है इन्फॉर्मेशन थ्योरी की, उन्होंने अपने लेक्चर में ऐसे बयान किया था, भाई से मैंने इसको ले लिया। हमने बहुत इसको तफसील से लास्ट टाइम देखा था कि टोटल जो एनर्जी है ना, टोटल एनर्जी असल में ये मैटर पार्टिकल वजूद में आने से पहले और बाद में ये सेम रहेगी, टोटल एनर्जी सेम रहेगी। वो कैसे सेम रहेगी कि जो ग्रेविटी है ना, इसी को स्टीवन हॉकिंग कहते हैं, देयर इज लॉ लाइक ग्रेविटी, यूनिवर्स कैन एंड विल क्रिएट इटसेल्फ आउट ऑफ नथिंग। ग्रेविटी ये करेगी कि जो मैटर रेडिएशन है ना, इसकी होती है, ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, ये पॉजिटिव एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, तो ग्रेविटी जो है वो नेगेटिव एनर्जी प्रोड्यूस करती है। तो जो जो ये पार्टिकल्स बढ़ते चले जाएंगे, तो इनकी नेगेटिव एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। अब इसको एक मॉनेटरी टर्म में देखें, लास्ट टाइम हम इसकी बड़ी तफसील कर चुके हैं, आप उस लेक्चर को दोबारा भी सुन लीजिए, कि आप ये जो मैटर रेडिएशन, ये जो मैटर पार्टिकल्स वजूद में आ रहे हैं यहाँ पर, या ये सेल्फ रेप्लिकेट कर रहे हैं अपने आप को, ये जो है इसको आप समझें कि आपके बैंक अकाउंट के अंदर ये पैसे हैं, 10 रुपए हैं, तो जो ही 10 रुपए होंगे तो -10 रुपए भी ग्रेविटी की वजह से प्रोड्यूस होंगे, क्योंकि ग्रेविटी जो है वो नेगेटिव काउंट होती है एनर्जी के अंदर। इसको बड़ी हमने तफसील से लास्ट टाइम देखा था, तो अभी हम उसको हर बात को तो नहीं दोहराया जा सकता, तो अब यही समझें कि इसकी पॉजिटिव एनर्जी होती है, ग्रेविटी की नेगेटिव एनर्जी होती है। तो इनकी सेल्फ रेप्लिकेशन के बाद टोटल एनर्जी क्या रही, टोटल एनर्जी 0 रहेगी, या टोटल एनर्जी वही रहेगी जो कि शुरू में थी, चाहे जितनी मर्जी मैसिव सेल्फ रेप्लिकेशन हो जाए। इसको हम बाद में जरा तफसील से भी देख लेंगे अगर वक्त बचा तो। उसके बाद क्या हुआ, ये जो जो रिपल्सिव ग्रेविटी मैटर था ये अनस्टेबल था, जैसे होता है रेडियो एक्टिव डिके होते हैं एलिमेंट्स जो है वो अनस्टेबल होते हैं, वो डिके कर जाते हैं, स्टेबल एलिमेंट्स बन जाते हैं, ये भी अनस्टेबल था, ये डिके किया, और डिके किया तो मैटर के तमाम पार्टिकल्स वजूद में आ गए, और उसके बाद जो तमाम ये पिक्चर है बिग बैंग के साथ मिल जाती है, कायनात ठंडी हुई, एक्सप्लोजन उसका जो है वो स्लो हुआ, और उसके बाद जो ये मुख्तलिफ जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं ये वजूद में आना शुरू हुए, फिर न्यूक्लियर वजूद में आना शुरू हुए, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसको भी हम आगे मजीद देख लेंगे। ये है पूरी की पूरी क्रिएशन सागा जिसका मैंने आपको रिकैप किया, और रिकैप इसका जरा तफसील से इसलिए करना पड़ गया कि लास्ट टाइम 2 माह पहले हमने इसको देखा था। तो देखें, आपको बड़े परस्पेक्टिव में ये बता दूं कि ये देखें जो क्वांटम फ्लक्चुएशंस हैं ये यहाँ पर हो रही हैं, अभी 0 टाइम है, 0 टाइम पर, बल्कि यहाँ पर तो टाइम रुका हुआ है ही नहीं, क्वांटम फ्लक्चुएशंस हो रही हैं यहाँ पर, जो ही ये आप समझ लें कि ये बल्कि वक्त से पहले ही हो रही है, इसको हम बाद में देखेंगे जब हम वक्त का तसव्वुर जैसे खत्म किया उन्होंने उसको देखेंगे। ये देखें कायनात अभी टाइम 0 है, और ये फ्रैक्शन ऑफ अ 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 सेकेंड है, ये आपको बिलियन 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 एक सेकेंड का जो हिस्सा है, वहां पर इन्फ्लेशन, ये जो कायनात को मैंने कहा कि फूली, अचानक से फूली, इलेक्ट्रॉन से भी छोटा साइज था, गोल्फ बॉल का साइज हो गया, इतनी रैपिड ये एक्सप्लोजन थी कि आप तसव्वुर इसका नहीं कर सकते। ये हुई 10^-32 सेकेंड के अंदर, ये खत्म भी हो गई, ऑलमोस्ट नथिंगनेस से कोई चीज वजूद में, गोल्फ बॉल का, ये ग्रेप फ्रूट का बास लोग बयान करते हैं साइज में, कायनात बन के वजूद में आ गई आपके सामने। तो ये टाइम स्केल आप देखेंगे क्या है। इसके बाद देखें अभी 1 माइक्रोसेकेंड गुजरा है तो प्रोटॉन्स फॉर्म होना शुरू हो गए हैं, और उसके बाद 0.01 सेकेंड गुजरा तो न्यूक्लियर फिजन शुरू हो गई। इससे इससे क्या मुराद है, यानी जो न्यूक्लियाई हैं, जो न्यूक्लियस है एटम के, आपको पता होगा जो आप बोहर एटॉमिक मॉडल पढ़ते हैं अपने स्कूल में, कि न्यूक्लियाई होते हैं वो न्यूक्लियस बनना शुरू हुए शुरू में, उसके बाद करते करते वो एटम्स बने और गैसेस बनी, सो बहुत सो, और ये करते करते ये आज हम, ये आज की यूनिवर्स कुछ ऐसे है। तो ये मैंने आपको दिखाने का मकसद ये था कि ये जितनी मैंने आपको सारी बात बयान की, आपके जहन में ना हो कि ये पता नहीं कितने बिलियन ईयर्स लग गए, ये यकमुश्त हुआ है जिसको स्पॉन्टेनियस क्रिएशन करते हैं, आप तसव्वुर में नहीं ला सकते ये कितनी जल्दी हुआ है ये सब कुछ। आगे हम बढ़ते हैं इस पर, आप हमने इस सबको देख लेने के बाद, और जब हम क्रिटिकल कमेंट्री करेंगे तो मजीद कुछ इसकी तनकी होगी, तो हम अब इस पर जो आज का हमारा खास जो हम देखना चाह रहे थे, इस पर हम एक क्रिटिकल कमेंट्री करेंगे। ना भी कंप्लीट होता हम इसको अगली दफा जरा ले जाएंगे, लेकिन ये कंप्लीट हो जानी चाहिए, इसमें हमको बहुत ही ज्यादा तफसील में जाने की, क्योंकि पूरी पिक्चर मैंने आपके सामने खोलकर दो मरतबा पेश कर दी है, तो अब आपको इसकी जरूरत नहीं होगी। तो देखिए, फर्स्ट क्रिएशन फ्रॉम नथिंग, ये मैं हॉकिंग और लॉर्डनो की जो किताब है द ग्रैंड डिजाइन, उसमें पढ़कर बयान कर देता हूँ ताकि फिर एक दफा ताजा हो जाए। अ ग्रेट मेनी यूनिवर्सेस, इसको मल्टीवर्स कहते हैं, वर क्रिएटेड आउट ऑफ नथिंग। नथिंग जो मैंने आपको बयान कर दिया, जो क्वांटम वैक्यूम। द क्रिएशन डज नॉट रिक्वायर द इंटरवेंशन ऑफ सम सुपरनेचुरल बीइंग और गॉड, रादर दीज मल्टीपल यूनिवर्सेस अराइज नेचुरली फ्रॉम फिजिकल लॉ, दे साइंस। ये साइंस हमें बताती है, यानी वो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि साइंस ने खुदा का तसव्वुर जो है उसको रिप्लेस कर दिया। तो ये देखें, ये पुणे की किताब से मैंने डिपिक्शन ली है। क्वांटम फ्लक्चुएशंस लीड टू द क्रिएशन ऑफ टाइनी यूनिवर्सेस आउट ऑफ नथिंग। अ फ्यू ऑफ दीज रीच अ क्रिटिकल साइज, देन एक्सपैंड इन एन इन्फ्लेशनरी मैनर, फॉर्मिंग गैलेक्सीज, स्टार्स, एंड इन एटलीस्ट वन केस बीइंग लाइक अस। इसको आप ऐसे भी पिक्चर कर सकते हैं जैसे कोक का होता है ना फॉर्म, उसके ऊपर बन रहे टूट रहे होते हैं उसमें बबल्स, उस तरीके से। तो ये वही बात है जो मैंने आपके सामने रख दी है। ये पहली क्रिएशन के बारे में, अभी इस बात के ऊपर हम जरा तबसरा करते हैं। देखें, जो लॉरेंस क्राउस हैं, ये फिजिसिस्ट, इन्होंने यूनिवर्स फ्रॉम नथिंग ये किताब लिखी, और वही ये सब कुछ उसमें पेश किया जो थीसिस स्टीवन हॉकिंग का। तो अब ये उसको कैसे बयान करते हैं, इस पर भी एक नजर डाल देते हैं। देखें, ये इसको कहते हैं कि ये इन्होंने किताब में बयान नहीं किया, बल्कि रिचर्ड डॉकिंस के साथ इनकी एक एक सेशन था, उसके अंदर ये बयान करते हैं। रिचर्ड डॉकिंस ने ये इस किताब को हाईली रेट किया और कहा कि ये जैसे डार्विन ने बायोलॉजिकल डिजाइन को उड़ा कर रख दिया था, इसी तरीके से जो इब्राहिमी खुदा है वो जो माजल्ला छुपता फिर रहा है जहां तक साइंस नहीं पहुंची, उन चीजों में के, यानी जिस तरह आप एक इबहाम पैदा करके तो किसी चीज को साबित करने की कोशिश करते हैं, तो ये किताब जो है ये डार्विन की याद दिलाती है, और ये अब फिजिक्स से भी खुदा को मार भगा रही है माजल्ला। तो ये बयान करते हैं ऐसे कि नथिंग इज नॉट नथिंग एनी मोर इन फिजिक्स, ये लॉरेंस क्रॉस बयान करते हैं। ये नथिंग इज नॉट नथिंग एनी मोर इन फिजिक्स, ये मैं बयान करता हूँ, हो ही नहीं सकता। थोड़ी सी रोशनी डाल दी इस पर मैंने। बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेशल रिलेटिविटी, ऑन एक्सट्रीमली स्मॉल स्केल्स, नथिंग इज रियली अ बॉइलिंग बबलिंग ब्रू ऑफ वर्चुअल पार्टिकल्स दैट आर पॉपिंग इन एंड आउट ऑफ एग्जिस्टेंस ऑन अ टाइम स्केल सो शॉर्ट यू कांट सी देम। इनको आप डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते, लेकिन इनके जो इफेक्ट्स हैं उनको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये यानी जिस चीज को जो हमारी ऑब्जर्वेशनल डेटा में या इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशनल डेटा में जो चीज शामिल है वो ये कि एम्प्टी स्पेस एम्प्टी नहीं होती, कोई कायनात में नथिंग नाम की चीज हो नहीं सकती, ये बात दुरुस्त है। इसको फिर कयास किया कि शुरू में भी कायनात ऐसी होगी, और ये कयास भी कोई बईतस यानी अकल बात नहीं है, तो ये कयास ठीक है। एनीवे इसको भी हमने वो पेश कर दिया। इसमें मुझे खुद से, यानी मैं थियोरेटिकल फिजिसिस्ट तो नहीं हूं, ऑल्दो कि फिजिक्स हम सब ने पढ़ी हुई है, मैंने कुछ यूनिवर्सिटी लेवल पे भी पढ़ी हुई है, लेकिन ये इतने स्पेशलाइज फील्ड है कि आपको जो इसके एक्सपर्ट्स हैं वहीं से इसका अगर आप तबसरा लें तो वो बात ज्यादा बेहतर होगी, और उसको फिर आप तबसरे को आप खोल कर अपने यानी ऑडियंस के लिए फिर बयान कर सकते हैं। तो डेविड आल्बर्ट हैं जी, ये एथिस्ट हैं और फिलोसफर भी हैं, और फिजिक्स में भी इनकी इनका बैकग्राउंड है। इन्होंने बहुत रिएक्शन शो किया जब ये किताब इनकी आई लॉरेंस क्राउस की, और उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल फिलोसॉफिकली गलत यूज है नथिंग का, वो नथिंग है ही नहीं, दैट इज रियली समथिंग, जैसे कि ये उस वीडियो टॉक में भी खुद से उन्होंने बयान कर दिया, लेकिन इस तहदीद के साथ बयान किया कि ये जो जो नथिंग है वो फिजिक्स ही उसकी हमें इजाजत नहीं देती, ठीक है, कि कोई नथिंगनेस इन द फॉर्म के कुछ भी ना हो, वो हो ही नहीं सकता। जब भी सबसे करीब तरीन नथिंगनेस की एम्प्टी स्पेस होगी, जिसके अंदर कुछ भी नहीं होगा और उसमें भी कुछ पार्टिकल्स होंगे। तो इन्होंने जो इस पर तबसरा किया, इट्स वर्थ लुकिंग एट, इस पर काफी जनरेट हुआ दोनों के दरम्यान में एक तनाव, और काफी एक किस्म का इनडायरेक्ट मुकालमा भी। लेकिन एनीवे, ये देखें, ये है ना, इसकी सिमुलेशन करके दिखाएगी, ये चीजें देखी नहीं जा सकती इस लेवल के ऊपर। ये सिमुलेशन है कि ये वर्चुअल पार्टिकल्स कैसे बन रहे टूट रहे होते हैं। ये पता है कितनी स्पेस है, ये स्पेस है क्वार्क्स के दरम्यान की, प्रोटॉन्स प्रोटॉन्स से भी छोटे लेवल पर, तो ये बाउंड्री टूट रही है चीजें उसके अंदर, जिसको वो कहते हैं कि ये अब भी इस कायनात में बनती टूटती है इस लेवल के ऊपर, हमारी कायनात भी इसी तरह से छोटे लेवल से वजूद में आई होगी। तो वो ये कहते हैं रिलेटिविस्टिक क्वांटम फील्ड थ्योरेटिकल वैक्यूम स्टेट्स, ये जो बहुत मोटी सी बात है सारी मैं आपको बयान कर चुका हूं, ये क्वांटम फील्ड थ्योरेटिकल वैक्यूम स्टेट्स इस स्टेट की बात कर रहे हैं। रिलेटिविस्टिक यानी जो आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से जो मैंने आपको अभी बता भी दिया ना थोड़ी देर पहले, आइंस्टाइन की जो रिलेटिविटी की थ्योरी है कि उससे और क्वांटम वैक्यूम से या क्वांटम जो थ्योरी है या क्वांटम फिजिक्स है, उन दोनों को हम मिलाएं तो ये पिक्चर बनती है। बल्कि जो पिक्चर बनेगी वो माफ कीजिएगा, ये थोड़ा सा यहाँ पर खलते मबस हो गया, ये जो आइंस्टाइन की दो सीरीज है ना, एक जनरल रिलेटिविटी है, वो जनरल रिलेटिविटी बाद में जो ग्रेविटी जैसे आपको मैंने बताया कि नेगेटिवली बिहेव करती है वो वहां पर आएगी। यहाँ पर जो रिलेटिविस्टिक या थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का इन्होंने जिक्र किया है वो आइंस्टाइन की जो स्पेशल रिलेटिविटी की थ्योरी है, ठीक है ना, जो फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस वगैरह के बारे में, बट एनीवे उस डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। इन दोनों को इकट्ठा करें तो ये पिक्चर हमारे सामने बनती है और ये पिक्चर वेल टेस्टेड है। तो ये जो क्वांटम वैक्यूम है इसको नथिंग कहना, इसके ऊपर ये तबसरा दे रहे हैं, कह रहे हैं कि इट इज नो लेस रिलेटिविस्टिक क्वांटम थ्योरेटिकल वैक्यूम स्टेट्स नो लेस देन जिराफ्स और रेफ्रिजरेटर्स और सोलर सिस्टम, जैसे कि जिराफ होते हैं, जराफे होते हैं, जराफे कहते हैं, और हमारे फ्रिज होते हैं, सोलर सिस्टम होते हैं, no less than these things are particular arrangement of elementary physical stuff. वो ये कह रहे हैं कि elementary physical stuff की ये physical चीजों की एक खास arrangement है, ये जो quantum जिसको vacuum state आप कह रहे हैं इसको आप nothing नहीं कह सकते, ये physical stuff है, उसकी एक खास arrangement है, बल्कि खास arrangement के अंदर ये physical space जो है उसके अंदर उसकी एक खास आप उसकी configuration है, एक खास arrangement है, एक खास आप इसको अरेंजमेंट इस मानों में बोला है कि स्पेस और उसकी खास कुछ प्रॉपर्टीज हैं इंटरनल, और वो फिजिकल स्टफ है जिसको आप नथिंग कह रहे हैं। द ट्रू रिलेटिविस्टिक क्वांटम फील्ड थ्योरेटिकल इक्विवेलेंट टू देयर नॉट बीइंग एनी फिजिकल स्टफ एट ऑल इजंट दिस और दैट पर्टिकुलर अरेंजमेंट ऑफ द फील्ड्स, व्हाट इट इज ऑब्वियसली एंड इनलेक्टिवली एंड ऑन द कॉन्ट्ररी इज द सिंपल एब्सेंस ऑफ द फील्ड स्पेस। वो ये कह रहे हैं कि अगर आपने सही मानों में नथिंग, जिसको फिलोसॉफिकल नथिंग कहते हैं, कुछ भी ना होना, उसका जिक्र करना है और उसको इसके साथ तशबीह देनी है, तो ये बेसिकली आपको मैंने बताया ना कि क्या है, जिसको फील्ड बोल रहे हैं जिसको, वो बेसिकली स्पेस है। अभी आप इसको ना पढ़ें, ये मुश्किल है, मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूं कि अगर आपने कहना है कि एक तरफ स्पेस मौजूद है जिसके अंदर ये सब कुछ हो रहा है, दूसरी तरफ कहना है कि नथिंगनेस मौजूद है, इन दोनों का कंपैरिजन ये होगा कि इसमें स्पेस को ही आप खत्म कर दें, स्पेस ही ना हो, टोटल सिरे से स्पेस ही ना हो, तो तब नथिंग वो बनेगा जिसको फिलोसॉफिकल नथिंग कहते हैं। तो ये नथिंग है नहीं, ये समथिंग है। द फैक्ट दैट सम अरेंजमेंट्स ऑफ फील्ड्स हैपन टू कॉरेस्पॉन्ड टू द एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टिकल्स एंड सम डोंट इज नॉट अ विट मोर मिस्टीरियस देन द फैक्ट दैट सम ऑफ द पॉसिबल अरेंजमेंट्स ऑफ माय फिंगर्स हैपन टू कॉरेस्पॉन्ड टू द एग्जिस्टेंस ऑफ अ फिस्ट एंड सम डोंट। वो ये कह रहे हैं कि इस ये जिसको नथिंग कह रहे हैं ये थोड़ा सा भी कुछ मिस्टीरियस नहीं है इससे कि आप अपनी ऐसे एक मुट्ठी बनाए, इसमें मैं ये खोल रहा हूं तो ये खास कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, तो ये इस खास कॉन्फ़िगरेशन में आप पार्टिकल्स वजूद में आ गए, आप पार्टिकल्स गायब हो गए, वजूद में आगे गायब हो गए, वजूद में आगे गायब हो गए, उंगलियां मौजूद है, हाथ मौजूद है, फिजिकल स्टफ मौजूद है, उसकी एक खास प्रॉपर्टी है, एक खास कॉन्फ़िगरेशन है, उसकी अरेंजमेंट है, उस खास अरेंजमेंट, उस खास सिस्टम, यानी अरेंजमेंट को आप ऐसे समझिए कि एक सिस्टम है, छोटा सा क्वांटम सिस्टम है, उसमें ये बंद रहे टूट रहे, तो ये इसमें क्या मिस्टीरियस चीज है या इसको आप नथिंग कैसे कह रहे हैं, वो ये इसको कर रहे हैं कंसीड। फिर बयान करते हैं कि एंड द फैक्ट दैट पार्टिकल्स कैन पॉप इन एंड आउट ऑफ एग्जिस्टेंस ओवर टाइम एज दोस फील्ड्स रीअरेंज देमसेल्व्स इज नॉट अ विट मोर मिस्टीरियस देन द फैक्ट is not the width more mysterious than the fact that fists can pop in and out of existence over time as my fingers rearrange themselves. ये वही बात है जो मैंने आपको बयान कर दी कि इसमें कोई भी mysterious बात नहीं है, nothing है ही नहीं, space मौजूद है और उसके अंदर activity हो रही है पूरी कुवत के साथ। एंड नन ऑफ दीज पॉपिंग्स, ये जो पॉप इन एंड आउट ऑफ एग्जिस्टेंस हो रही है चीजें, इफ यू लुक एट देम राइट, अगर सही तरीके से देखें, अमाउंट्स टू एनीथिंग इवन रिमोटली इन द नेबरहुड नेबरहुड ऑफ अ क्रिएशन फ्रॉम नथिंग. वो ये कह रहे हैं कि दूर दूर तक इसका कोई ताल्लुक नहीं है कि आप कहें कि ये क्रिएशन हो रही है आउट ऑफ नथिंग, ये क्रिएशन है आउट ऑफ समथिंग. इस पर डेविड आल्बर्ट ने बहुत काम किया और ये उन्होंने इस बात को दुरुस्त किया, क्योंकि फिलोसफी को जानते हैं जो कंटेम्प्रेरी फिजिसिस्ट हैं वो फिलोसफी में बहुत पीछे हैं, और ये खास मसला है साइंटिस्ट का कि वो फिलोसफी को और थियोलॉजी वगैरह को जानते नहीं है, तो फिलोसॉफिकल बाज़ अगर बड़ी एलिमेंट्री मिस्टेक्स करते हैं. यही वजह है कि आप यूनिवर्सिटीज के अंदर साइंटिस्ट के लिए फिलोसफी को पढ़ना, फिलोसफी ऑफ साइंस को पढ़ना बड़ा जरूरी हो गया. आइंस्टाइन, नील बोर्स और वो जो पुराने थे, वो जो बैश था फिजिसिस्ट का, वो फिलोसफी को बहुत अच्छे तरीके से समझते थे. लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ा ये गैप है. जब मैं बल्कि अपना डॉक्टरेट कर रहा था उसी ईयर में ये लाजिम हुआ था मेरी यूनिवर्सिटी में कि फलसफा हर आदमी पढ़ेगा, फिलोसफी ऑफ साइंस. तो इन्होंने जब ये क्रिटिसिज्म किया तो इस पर बहुत शोर किया लॉरेंस क्रॉस ने, और फिर उनसे पूछा गया तो लॉरेंस क्रॉस ने कहा कि भाई ये तो मैंने लोगों को मुतवज्जा करने के लिए उसको नथिंग कह दिया था, और ये मतलब बिल्कुल जैसे उन्होंने खुद भी बाद में बयान किया कि ये नथिंग तो है ही नहीं, तो ये मेरे पब्लिशर ने और हमारी स्ट्रेटेजी थी कि लोगों को मुतवज्जा हम करें, तो ये नथिंग है ही नहीं, बेसिक पॉइंट ये है यहाँ पर. अच्छा, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर जो उनका दूसरा पॉइंट था, जो स्टीवन हॉकिंग का भी पॉइंट है और इनका भी पॉइंट है. वो पॉइंट ये है कि हॉकिंग और क्रॉस ये कहते हैं कि जो साइंस है या फिजिक्स है वो उसने नथिंगनेस के वजूद ही का होना उसको इम्पॉसिबल करार दे दिया. तो वो कहते हैं हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये अभी हम देखते हैं कि क्या है, ये खास एक प्रिंसिपल है क्वांटम फिजिक्स का, डज नॉट अलाउ द एग्जिस्टेंस ऑफ नथिंग इन द सेंस इट इज अंडरस्टूड इन फिलोसफी नील और ऑर्डिनरी लैंग्वेज नॉन बींग. वो ये कहते हैं कि असल में ये नथिंग का कॉन्सेप्ट इसलिए भी हम इस पर इतना जोर दे रहे हैं कि फिजिक्स ने या हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है वो ये लाजिम करता है कि नथिंगनेस पाई नहीं जानी चाहिए. तो इस पर अभी हम तबसरा देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट तबसरा होगा इस लिहाज से कि लॉज ऑफ फिजिक्स, ऐसे ये हम हाई लेवल से बात शुरू करेंगे लॉज ऑफ फिजिक्स पर आज, जैसे मैंने बयान किया, आगे तफसील से जेरे बहस लाएंगे खुदा से जब उनका मुआवजना करेंगे, और आज लॉज ऑफ फिजिक्स थोड़ी सी बहस कर लें क्योंकि ये बहुत गलत फहमी पैदा करते हैं, तमाम गलत फहमी यहीं से पैदा होती. तो ये देखें, अब मैं यहां से हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पर अभी आते हैं. पहले लॉज ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ नेचर ये होते क्या हैं, इन पर हम आ जाते हैं. मेरा ख्याल ये था कि आपसे थोड़ी सी इस पर पहले फीडबैक लीजिए, लेकिन वक्त कम है इसलिए मैं इसको खुद ही से बयान कर देता हूं. तो लॉज ऑफ फिजिक्स या लॉज ऑफ नेचर या कानून कुदरत, आप कह लें कुदरत का कानून, द सो कॉल्ड लॉज प्रिंसिपल्स ऑफ नेचर, मैंने लिखा है अपनी किताब के अंदर, are nothing but description of certain consistent behaviors that things in the universe are predisposed to produce due to their inherent tendencies, capacities or causal powers. ये थोड़ा सा फलसफियाना तरीके पर इस बात को बयान किया. सादा बात ये है, आपको डेफिनेशन ऐसी देनी पड़ती हैं, नहीं तो बात बनती नहीं है, यानी इंटेलेक्चुअल लेवल के ऊपर. तो लॉज ऑफ फिजिक्स एंड लॉ ऑफ नेचर क्या है, जरा जहन में एक तस्वर तो कायम करें. क्या ये कोई जो लॉ ऑफ द कंट्री होता है या डिवाइन लॉ होता है या जो शरीयत है उस किस्म का कोई लॉज है जो कि एक तरफ पड़े हुए हैं और उनको अप्लाई करने हमने किस लोगों के ऊपर या किसी चीज के ऊपर, जैसे लॉज अलहदा पड़े हुए हैं और फिजिक्स की जो चीजें हैं वो अलहदा पड़ी हुई जिन पर ये अप्लाई होंगे. तो मैंने ये कहा है कि ऐसा नहीं है, बल्कि ये क्या है, जो चीजें हैं वो अपने वजूद ही के अंदर कुछ ऐसी खास प्रॉपर्टीज रखती हैं, कुछ खास टेंडेंसीज या पावर्स रखती हैं जो जहूर में आती हैं, तो एक कंसिस्टेंट किस्म का बिहेवियर वजूद में आता है. उस बिहेवियर को जब हम लिख लेते हैं किसी जगह पर तो वो एक डिस्क्रिप्शन होती है उस बिहेवियर की, उसको देखकर हमें उसको बयान कर दिया तो लॉ ऑफ साइंस वजूद में आ जाता है. देखें ये कप है, इसकी इसमें एक डिस्पोजिशन, यहाँ पर एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ डिस्पोजिशन, उस प्रॉपर्टी को कहते हैं जो अभी जहूर में ना आई. कप की एक प्रॉपर्टी है कि जब भी मैं इसको, एक डिस्पोजिशन है बल्कि जो जिस कि मैं इसको यहां से छोड़ूंगा ये सख्त जगह पर जाकर लगेगा तो ये टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, इट विल स्मैश इनटू पीसेस. तो क्या है, इसके अंदर ये एक कुव्वत पाई जाती है, टेंडेंसी पाई जाती है, एक डिस्पोजिशन पाई जाती है कि जो ही मैं ये काम करूंगा तो ये टूट जाएगा, कांच का बना हुआ या शीशा। तो ये अगर बार बार हर सरफेस पर मैं यहीं से छोड़ूं इसको तो लाजमन ये टूट जाए। तो इस टूट जाने को आप, मैं लॉ के तौर पर बयान कर देता हूं कि तमाम कप्स जो हैं उनको ऊपर से नीचे फेंका जाए खास हाइट से तो वो टूट जाए, तो लॉ वजूद में आ जाए। अब हुआ क्या, ये लॉ कहां से वजूद में आया कि बाहर पड़ा हुआ था? नहीं, इसकी अपनी प्रॉपर्टीज थी, जो एक एक इसकी अपनी प्रॉपर्टी है और इसकी फ्रेजाइलनेस, फ्रेजिलिटी, फ्रेजिलिटी इसकी, और जो सख्त होना है इसका, पत्थर का जिस पर इसने लगना है, इन दोनों के मिलाप से कंसिस्टेंट बिहेवियर वजूद में आ गया, इसको आप लॉ कह रहे हैं। ये है लॉ, ये कोई मिस्टीरियस चीज नहीं, इसको अच्छे तरीके से जहनशीन कर लें, ये बहुत बहुत गलतफहमी का बायस बनती चीज। मैं इसकी आपको मिसाल देता हूं कि पानी अपनी सतह को हमवार रखता है। ये अब क्या है, ये कोई पानी की सतह को हमवार, जैसे इमाम गजाली समझते थे कि खुदा हर वक्त उसकी सतह को हमवार रखवाता है, नहीं ऐसा नहीं है। ये पानी की अपनी एक अंदरूनी कुवत है, ये उसकी एक प्रॉपर्टी है कि वो अपनी सतह को हमवार रखता है, ये पानी के अंदर से फूटती है। ठीक है, तो ये जो पानी अपनी सतह को हमवार रखता है, पानी होगा, पानी की खास प्रॉपर्टी होगी, वो फिर जहूर में आएगी, तो हम कहेंगे कि तमाम, उसको हम देखेंगे मुख्तलिफ जगहों पर, हम कहेंगे उससे एक लॉ बनाएंगे कि पानी अपनी सतह को हमवार रखता है। ठीक है, इसकी मैं कुछ और मिसालें देता हूँ। ये जितनी जो प्रॉपर्टीज हैं या डिस्पोजिशन है, प्रॉपर्टी डिस्पोजिशन का आपने फर्क समझ लिया ना, जो इसेंशियल प्रॉपर्टीज और डिस्पोजिशन, इसको फलसफे उर्दू में कहते हैं, जो प्रॉपर्टीज तो खसूसियात होंगी, प्रॉपर्टीज को क्या कहा जाता है फलसफे की इस्तेलाह में, खसूसियात तो एक आम साइंस इस्तेलाह में कह दिया जाता है, इसकी बड़ा बात जहन में नहीं आ रही। डिस्पोजिशंस को कहा जाता है अबारेज, कि जो जो एक खास सिचुएशन होगी तो वो चीज मैनिफेस्ट हो जाएगी। तो इसकी जो खसूसियात हैं वो, और इसके एक तो इंटरनल एसेंशियल प्रॉपर्टीज होती है, एसेंशियल प्रॉपर्टी पानी की आप समझ लें कि ये है कि वो अपनी सतह को नहीं, बल्कि इसकी हम कुछ और मिसालें ले लेते हैं, अभी बात ये वाजे होती चली जाएगी। जो बात मैं करना चाह रहा हूँ, काफी मिसालें अभी सामने आनी है, अभी आपको बता देता हूँ, ये चीज वाजे कर दूंगा। यहाँ पर जो बात बताना चाह रहा हूँ वो ये कि ये जितनी प्रॉपर्टीज हैं या डिस्पोजिशन हैं, ये इनका कोई सवाल नहीं है चीजों के वजूद से पहले। ये नहीं है कि चीजों के वजूद से पहले ये कि पड़ी हुई जो चीजों के वजूद में ले आई हैं और ये हो गया, नहीं, ये चीजें पहले से मौजूद हैं, ये चीजों में से फूटती हैं, ये प्रॉपर्टी ऑफ डिस्पोजिशन। और ये प्रॉपर्टी ऑफ डिस्पोजिशन कुछ ऐसी होती हैं जो बार बार एक ही तरीके से फूटती हैं, जैसे पानी हर जगह पर देखते हैं अपनी सतह को हमवार रखता है, तो वहां से हम एक लॉ बना लेते हैं। अच्छा, एक प्रॉपर्टी, अब इसमें यह है कि कोई प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जो जो किसी कानून में नहीं ढल सकती, जो कि रैंडम होती हैं, या जो कि जो कुछ भी हो सकता है। यानी अगर मैं पानी को एक खास टेम्परेचर पर रखूं तो वो श्रिंक भी होना शुरू हो जाए, वो बॉयल भी होना शुरू हो जाए, तो वो उछलना भी शुरू हो जाए ऊपर को, ये सब कुछ करना शुरू हो जाए, तो मैं कोई लॉ बना ही नहीं सकता। ये कंसिस्टेंट बिहेवियर्स होते हैं या कोई कंसिस्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि फिर लॉज की सूरत इख्तियार करती हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि ये, इसको भी स्टीवन हॉकिंग ने इसकी एक मिसाल दी है, कि गो के इस मिसाल को फिर उन्होंने ज्यादा वो किया है, नुआंसेस या उसके अंदर शामिल किए हैं, प्रिसाइज किए, जैसे सूरज निकलता है रोजाना ईस्ट से, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये भी एक कानून है, कुदरत है, सूरज कभी वेस्ट से निकलता हो कभी ईस्ट से, तो फिर हम ये कानून कोई नहीं बना सकते, बयान नहीं कर सकते उसका। तो लॉज को वजूद में उनके आने के लिए तीन चीजें चाहिए। पहले अ पर्टिकुलर, पर्टिकुलर कहते हैं फलसफे की सलाह में एक खास चीज को, एक खास चीज का वजूद होना चाहिए, पानी का वजूद होना चाहिए, कंसिस्टेंट पावर्स या बिहेवियर होने चाहिए, उस पानी की खास एक कंसिस्टेंट बिहेवियर ये हो कि जब भी उसको डाला जाए किसी जगह पर तो अपनी सतह उसकी हमवार हो जाए, या वो हमवार करने की उसको सो टू स्पीक कोशिश करे। तो ये जो कंसिस्टेंट बिहेवियर्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ये एक फिक्स बिहेवियर, ये कंसिस्टेंट पावर्स जो हैं, ये मैं आस्ते आस्ते लेकर गया हूं यहाँ पर, एक लफ्ज में भी आप इसको बयान कर सकते हैं कि जो कंसिस्टेंट पावर्स हैं उनकी जो अंदर की प्रॉपर्टी, एक फिक्स बिहेवियर है आउटकम को वजूद बख्शते हैं, इसको रेगुलरिटी कह सकते हैं हम, लॉ कह सकते हैं, इस रेगुलरिटी ज्यादा बेहतर लफ्ज है, इस रेगुलरिटी को वजूद में लाने के, रेगुलर बिहेवियर को डिस्क्राइब करने के लिए, फिर हम जो वजूद में आ जाता है डिस्क्राइब करने के लिए, हम एक लॉ को फॉर्मुलेट कर लेते हैं। वो लॉ क्या है, वाटर कीप्स इट्स सरफेस लेवल, इसमें आप यू नेम इट, आप ई इक्वल्स एम सी स्क्वायर, इसको अगर लॉ के तौर पर पेश करना चाहते हैं तो देखें, आप मुझे एनर्जी दे दें या मैस दे दें, एनर्जी और मैस मुझे मिल जाएगा तो ये लॉ आपसे आप इसका जहूर हो जाएगा। लेकिन मुझे एनर्जी और मैस चाहिए, नहीं तो ये लॉ वजूद में नहीं आ सकता। लॉज एनर्जी और मैस को वजूद में नहीं ला सकते। लॉ पर होने मिन्नत है इस चीज का कि ये चीजें पहले से मौजूद हो। ये न्यूटन का जो लॉ है कि एक एक्शन का उतना ही रिएक्शन होता है ऑपोजिट, तो ये एक्शन और रिएक्शन किस चीज का होगा? चीजों का होगा। चीजें मुझे दें तो मैं उनको मारूं तो फिर ये चीज पैदा हो जाएगी। आप जो बॉयल्स का लॉ है, गैस लॉ, उसको आप पढ़ते हैं, उसमें ये है कि जो प्रेशर है गैस का और वॉल्यूम, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। प्रेशर बढ़ा देंगे वॉल्यूम कम हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ा देंगे प्रेशर कम हो जाएगा। भाई मुझे गैस दे दें, गैस की एक खास प्रॉपर्टी है जो फिर इस तरह जोर में आती है, तो ये मैं आपको लॉ ये दे दूंगा। गैस के बगैर ये लॉ वजूद में आ जाए ये नहीं हो सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आगे हम इसको मजीद खोलेंगे तो ये काम में आएंगे। वक्त हमारे पीछे कम बचा है लेकिन कुछ चीजें मैं चाह रहा हूँ कि खत्म हो जाए। तो अब हम देखते हैं कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है, क्या उसने कि क्रिएशो एक्स नाइलो, इसको फलसफे में खास ये कहा जाता है कि क्रिएशन आउट ऑफ नथिंग, इसको हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने क्या नथिंग के कॉन्सेप्ट को वाकई खत्म कर दिया? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने कि नथिंग वजूद में नहीं आ सकता, या उसका लाजमी हमें उसके डेफिनेशन को चेंज करना पड़ेगा, फिजिक्स ने चेंज कर दिया, ये क्या मामला है? तो पहले देखें कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है। ये अब इस हम डिटेल में नहीं जाते, इसको आप बड़ी मोटी सी बात, चले मैं पढ़ देता हूँ, वो लोग जो थोड़ा सा फेमिलियर है तो फिर मैं इसको आम फहम अंदाज में बयान कर दूंगा। ड्यू टू वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी ऑफ क्वांटम ऑब्जेक्ट्स, क्वांटम लेवल पर जब आप जाते हैं ना तो पार्टिकल्स इस तरह बिहेव नहीं करते जैसे आम हमारे इस लेवल पर आपको ये पार्टिकल बिहेव कर रहा है। अगर ये क्वांटम ऑब्जेक्ट होता तो ये जब ट्रेवल करता है तो वेव की तरह बिहेव करता है, और जब किसी चीज के साथ इंटरेक्ट करता है तो एक फिर पार्टिकल की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है। तो क्या होता है कि मैटर पार्टिकल्स जो है वो पार्टिकल्स की तरह बिहेव नहीं करते, लाइट के भी पार्टिकल्स, फोटॉन्स वगैरह, वो वेव्स की सूरत में भी बिहेव करते हैं और पार्टिकल की सूरत में भी बिहेव करते हैं। वेव्स की सूरत में इनका बिहेव करना बड़ी एक अजीब सी बात है, इस पर आप मजीद पढ़ लीजिएगा, इसको देख लीजिएगा, वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी। ये वेव जो है ना, इस ये मैसलेस भी होती है, इसका कोई मैस नहीं होता, यानी ये आप समझ लें कि किसी वक्त ये मैटर पार्टिकल गोस्ट की सूरत में बिहेव करेगा सो टू स्पीक, और कभी मैटर पार्टिकल। तो वहां से ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल असल में फूटता है, और ये जो असल बात जो आपको समझने की, वो ये बताता है कि कुछ जो वेरिएबल्स हैं उनको हम इस वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी की वजह से सही तरीके से प्रिसाइजली मेजर कर ही नहीं सकते, इकट्ठा भी उनको मेजर नहीं कर सकते और अलग अलग भी उनको मेजर नहीं कर सकते प्रिसाइजली। मिसाल के तौर पर किसी पार्टिकल की पोजीशन को और पाथ को, जो पोजीशन है उसकी वो पार्टिकल लाइक बिहेवियर है कि पोजीशन कहाँ होगी, ये कब की ये पोजीशन, लेकिन जब वो बिहेव कर रहा है वेव की सूरत में तो वेव जो है वो तो बाजू का इस तरफ भी मूव करती है, इस तरफ भी मूव कर रही होती है एट द सेम टाइम, और उसका पूरा का पूरा यानी वो बिहेवियर को अगर आप उसके मूवमेंट को या पाथ को देखना चाहेंगे तो आप उसको वेव लाइक चीज को देखना चाह रहे होंगे। पोजीशन को देखना चाहेंगे तो वेव तो फैली हुई होती है, पोजीशन पार्टिकल लाइक, इसकी खास ये पोजीशन है, पार्टिकल लाइक बिहेवियर है। तो ये आपको दोनों के दिमाग में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, और आप अगर पोजीशन को जितना प्रिसाइजली मेजर करते हैं उतना ही उसका पाथ, क्योंकि पूरी वेव मूव कर रही होती है, पाथ ओजन होना शुरू हो जाता है, तो जितना पाथ को मूव करेंगे वेव लाइक बिहेवियर को देखना शुरू करेंगे उतना वो इस वक्त ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पर है, वो तो वेव की तरह बिहेव कर रहा है, तो इस पूरे के पूरे रीजन में किसी जगह किसी 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 एक पूरे रीजन में किसी जगह पर मौजूद है, और प्रोबेबिलिटी उसकी पाई जाती है, यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर, यहाँ पर, देखने की कोशिश करेंगे जब इसको मेजर करेंगे तो वो आपको एक जगह पर नजर आएगा। ये भी बाद में इसको इसका आपकी कॉन्शियसनेस के साथ या मेजर करने के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है, असल में वो जब इंटरेक्ट करता है किसी और पार्टिकल के साथ, आपको मेजर करने के लिए किसी भी चीज को उसको इंटरेक्ट करवाना पड़ता है लाइट के पार्टिकल के साथ, तो कॉन्शियसनेस के साथ जब लोग इसको मिसीरियस बनाकर पेश करते हैं कोई मिसीरियस चीज नहीं है। तो एनीवे बहुत सारे वेरिएबल्स ऐसे होते हैं जिनको बयक वक्त इकट्ठे भी और अलग अलग भी प्रिसाइजली उनको मेजर किया ही नहीं जा सकता, ठीक है, उसमें पोजीशन है, पाथ है, टाइम फ्रीक्वेंसी है, इसी तरीके से एनर्जी और एनर्जी का रेट ऑफ चेंज है। तो हमारा जो यहाँ नथिंगनेस के साथ जो चीज ताल्लुक रखती है वो ये है, एनर्जी एंड इट्स रेट ऑफ चेंज. अगर ये मेरा पॉइंटर ऑन है तो एनर्जी एंड इट्स रेट ऑफ चेंज. देखें ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है, वो इन सारे पेयर्स को उठाकर मैं उसको बयान कर सकता हूँ कि पोजीशन और पाथ को मेजर नहीं किया जा सकता. यहां पर बयान किया है एनर्जी और रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी को. तो एनर्जी रेट ऑफ एनर्जी इज वेरिएशन और बोथ कैन नॉट इन एनी रीजन ऑफ द कॉस्मिक स्पेस बी प्रिसाइसली इक्वल टू जीरो. इनको ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बताता है. ये बताता है कि एनर्जी और रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी किसी भी क्वांटम सिस्टम में या क्वांटम ऑब्जेक्ट का आप उसको प्रिसाइसली मेजर नहीं कर सकते. अच्छा, अगर नथिंगनेस एग्जिस्ट करती है तो उसमें क्या हो जाएगा कि एनर्जी उसकी और रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी. देखिए ना, ये जो एनर्जी है और एनर्जी फ्लक्चुएशंस है, वो जो एनर्जी चेंज हो रही है, ये प्रिसाइसली जीरो होगी तो एक एम्प्टी स्पेस का तसव्वुर बनेगा. तो ये प्रिसाइसली जीरो हो ही नहीं सकती. प्रिसाइसली जीरो नहीं हो सकती तो वो इसलिए वो ये कहते हैं कि ये अगर प्रिसाइसली जीरो हो जाएंगी फिर तो एनर्जी और रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी बिल्कुल प्रिसाइसली मेजर हो गया, वो क्या है 0.00, ये हो ही नहीं सकता. तो इसलिए जो कॉस्मिक स्पेस है वो हमेशा उसमें जो एनर्जी है वो आपको उस पर फ्लक्चुएशन नजर आती है कि एनर्जी उसमें कभी आप उसमें से एनर्जी को और उसके फ्लक्चुएशन को गायब नहीं कर सकते. तो आप बट व्हाट माइट मिनिमली बी कॉल्ड एब्सोल्युटली नथिंग स्पेस कंटेनिंग नथिंग द एनर्जी एंड इट्स वेरिएशन ओवर टाइम मस्ट बी एग्जैक्टली इक्वल टू जीरो. ये वही बात है जो मैंने बयान कर दी है कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है कि प्रिसाइजली मेजर हो ही नहीं सकती एनर्जी और रेट ऑफ चेंज. लेकिन अगर आप नथिंगनेस को यूं एक्सप्लेन करें कि कम अज कम, यानी वो उस तरह एक्सप्लेन ना करें कि स्पेस भी ना हो, बल्कि यूं एक्सप्लेन करें कि एक स्पेस हो और उसके अंदर कुछ भी ना हो, तो क्या होगा, एनर्जी और रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी जीरो हो जाए. ये हो ही नहीं सकता. ये प्रॉपर्टी है सिस्टम की इंटरनल, जिसकी ये पे डिस्क्रिप्शन है. तो जब ये नहीं हो सकता तो कोई भी एम्प्टी स्पेस हो ही नहीं सकती. तो अगर मैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को बिल्कुल आसान अल्फाज में पेश करूं तो वो ये है कि द कॉस्मिक स्पेस जो हमारे इर्द गिर्द स्पेस पाई जाती है वो इनहेरेंटली अपनी वजूद से कुछ ऐसी है कि वो कभी एम्प्टी नहीं हो सकती. अच्छा, लेकिन फिर मसला ये वही आ गया कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वो कह रहे थे कि वो डिक्टेट करते हैं कि स्पेस को ऐसा नहीं होना चाहिए. तो मैंने इसको उलट दिया. मैंने ये कहा कि पहले मुझे कॉस्मिक स्पेस दें, उसकी एक इंटरनल प्रॉपर्टी होगी यही कि उसमें एनर्जी और रेट ऑफ चेंज कभी इक्वल नहीं हो सकता, कभी जीरो नहीं हो सकता, 10 भी नहीं हो सकता, 20 भी प्रिसाइजली नहीं हो सकता, 20.00000 नहीं हो सकता, हमेशा एम्बिग्विटी रहेगी उसके अंदर. तो ये कॉस्मिक स्पेस मुझे दें, उसकी ये इनहेरेंट प्रॉपर्टी के तौर पर ये चीज सामने आएगी, उससे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एक डिस्क्रिप्शन इस प्रॉपर्टी की पैदा हो. ठीक है, तो अब देखें क्या सूरत हाल बनी है. अब आप देखें कि कॉस्मिक स्पेस भी ना हो, एब्सोल्युटली नथिंग हो, कुछ भी ना हो, कॉस्मिक स्पेस वजूद में नहीं आए, तो क्या होगा, एब्सोल्युटली नथिंग होगा. एब्सोल्युटली नथिंग से कॉस्मिक स्पेस वजूद में आएगी. मैं कह रहा हूं कि थोड़ी देर के लिए आप इसको जरा कॉस्मिक स्पेस की प्रॉपर्टी को भूल जाएं और इसको भूल जाएं कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है वो डिक्टेट करता है कि नथिंग जस्ट हो नहीं सकती. जरा तसव्वुर में एक मिनट के लिए लाएं कि कुछ भी ना हो, कि कुछ तसव्वुर में ये ना, नथिंगनेस को लाना तो इम्पॉसिबल है, ये लाएं कि कुछ भी ना हो फॉर द सेक ऑफ यू नो प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग. एब्सोल्युटली नथिंग का वजूद, पहले एब्सोल्युटली नथिंग होगी उसके बाद ही स्पेस वजूद में आएगी ना. यानी स्पेस के जैसे उन्होंने हमें बताया डेविड अल्बर्ट ने कि जो स्पेस है छोटे लेवल पर क्वांटम वैक्यूम है, उसका अल्टरनेटिव क्या होगा, कॉस्मिक स्पेस जिसमें कुछ भी ना हो. तो आप जेहन के अंदर लेकर रहे हैं कि कुछ भी, इस कॉस्मिक स्पेस जिसमें कुछ भी ना हो उससे भी पहले जाए, कुछ भी नहीं था, कोई चीज वजूद में आई. अब वो चीज वजूद में उसकी प्रॉपर्टी थी ये कि वो उसमें ये चीजें मेजर नहीं हो सकती, उससे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पैदा हुआ. अब हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पैदा हो रहा है कॉस्मिक स्पेस से. ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल स्पेस से बाहर निकलकर अगर ये खुद स्पेस नथिंगनेस से वजूद में आई है तो ये एब्सोल्युटली नथिंगनेस के अंदर जाकर डिक्टेशन कैसे दे सकता है. ये तो खुद वजूद में आएगा जब स्पेस होगी, ये तो स्पेस की इंटरनल प्रॉपर्टी है. अगर स्पेस से पहले नथिंगनेस मौजूद थी, मान लेते हैं, वो तो कहते हैं नथिंगनेस हो ही नहीं सकती, तो नथिंगनेस मैं कह रहा हूं कि थोड़ी देर के लिए मान लें कि हो सकती है, नथिंगनेस के बाद स्पेस वजूद में आ रही है। हाइजेनबर्ग सेकेंडरी प्रिंसिपल नथिंगनेस एब्सोल्यूट नथिंगनेस से वहां पर तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, वहां पर स्पेस नहीं है, स्पेस की प्रॉपर्टी नहीं है जहां से हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल फूट रहा है। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वहां जाकर कैसे वो एक किसी किसी तरीके पर असरअंदाज हो जाएगा और नथिंग को रोक देगा ना होने से। बिल्कुल, यानी ये लायानी किस्म की बात है। ये ऐसी बात है, आप मिसाल से आपको समझाऊं कि आप एक डब्बे को अपने जहन में उसका वजूद देख रहे हैं कि एक डब्बा है, ये डब्बे की इंटरनल प्रॉपर्टी है कि ये भरा हुआ है, इसका कोई कोना खाली नहीं हो सकता। ये क्या है, एक डब्बा मौजूद है, डब्बे पूरा फुल भरा हुआ है, इसके अंदर सुई रखने की जगह नहीं है। तो मैं क्या कह रहा हूं कि डब्बे की प्रॉपर्टी ये है कि कभी ये एम्प्टी नहीं हो सकता। अब डब्बे की प्रॉपर्टी को मैं उठाऊं और डब्बे के कहूं कि डब्बा जब वजूद में नहीं था तो जो चीज थी वो भी खाली नहीं हो सकती, या इस डब्बे या इस डब्बे के बाहर की जो स्पेस है वो भी खाली नहीं हो सकती। ये बिल्कुल लॉजिकली एक लयानी बात है। समझ में आ गई ना आपकी बात, कि इंटरनल स्पेस की एक प्रॉपर्टी को उठाकर, यानी आपको बड़े वहां पर्सपेक्टिव में शुरू किया कि लॉज ऑफ फिजिक्स जो है वो हमेशा चीजें होंगी उनके वजूद से फूटेंगे लॉज। यहाँ पर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी कोई कोई इसकी खसूसी हैसियत नहीं है, ये भी कॉस्मिक स्पेस है। ये डब्बा मौजूद होगा तो डब्बे के अंदर तिल धरने की जगह नहीं है, तो मैं कहूंगा कि इस डब्बे में तिल धरने की जगह नहीं है, तो ये डब्बे की प्रॉपर्टी है। इस डब्बे की प्रॉपर्टी को मैं डब्बे के बाहर कैसे अप्लाई कर सकता हूँ, ये डब्बे के वजूद में आने से पहले ये प्रॉपर्टी कैसे एग्जिस्ट करेगी। ये बात मैं चाह रहा था कि आप के गोश गुजार करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये बात है। अब हम देखें, आ जाते हैं जो क्रिएशन ऑफ नथिंगनेस है ना, पहले तो क्वांटम वैक्यूम से वो वजूद में आ गई, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद दूसरे मरहले में स्टीवन हॉकिंग ये कहते हैं कि लॉ ऑफ ग्रेविटी क्योंकि था, तो लॉ ऑफ ग्रेविटी की वजह से यूनिवर्स ने अपने आप को बना दिया। ये दूसरी यूनिवर्स की जो क्रिएशन है ये उसके बारे में ये बयान है। मैं इसको स्किप करता हूं, मैं आपको, क्योंकि सारा कुछ मैंने बयान कर दिया, मैं आपको इस पर ले जाता हूं। देखें शुरू में क्या है, ये ऐसे जैसे कोका कोला के अंदर से, सोडा के अंदर से, पेप्सी कोला के अंदर से आपको नजर आ रहे होते हैं बबल्स फूटते हुए, इस तरह ये क्वांटम वैक्यूम बिल्कुल ऐसे एक सोप था, एक फोम था, जहां से कायनात, जिसको वो नथिंग कह रहे हैं, जो असल में नथिंग है, यहां से कायनात फूट रही है, ठीक है। हमारी कायनात भी, बहुत सारी कायनातें फूट रही है, ठीक है। ये तो पहला हो गया। अब स्टेज टू में क्या है, जो ग्रेविटी की बात स्टीवन हॉकिंग कर रहे हैं कि देयर इज अ लॉ ऑफ ग्रेविटी, तो उसकी वजह से खुद ब खुद चीजें वजूद में आ जाएंगी। अब देखें कि हुआ क्या है, हुआ यह है कि जो वहां से चीज वजूद में आई है क्वांटम वैक्यूम के अंदर से, वो तो इतनी छोटी सी, इलेक्ट्रॉन से भी छोटी स्पेस है जो आप तस्वर में नहीं ला सकते। और ये जो पार्टिकल वजूद में आया है, इसको पार्टिकल का लफ्ज भी गलत फहमी पैदा कर सकता है, ये एम्प्टी स्पेस वजूद में आई है, बहुत 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 छोटी सी। अब क्या हुई है चीज, वो ये हुई है कि इस एम्प्टी स्पेस के अंदर एक छोटा सा हमें पैच, हम उसको अज्यूम करेंगे, वो मानना पड़ेगा कि मौजूद था, उस पैच के अंदर एक्सप्लोजन हुआ जिसको हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। बिग बैंग से पहले, बिग बैंग में जो इन्फ्लेशन, बाद में जो एक्सपेंशन हो रहा है, वो इसी के होने में रहता है। तो ये इन्फ्लेशन से पहले क्या था, ये देखें एक पार्टिकल था इस तरह का छोटा सा, और उसके बाद फिर ये पार्टिकल जो है वो फटा, स्पेस पे इंक्रीज हुई, और तमाम के तमाम मैटर पार्टिकल्स यकमुश्त एक ही लम्हे में तमाम के तमाम वजूद में आ गए। कहां से, वो छोटा सा जो एंटी ग्रेविटी स्पेक था वहां से। ये मैं आपको वापस ले जाता हूं यहां पर, एक मिनट के लिए, देखिए मेरा लिंक नहीं काम कर रहा। जी, मैं वापस यहां से आपको ले जाता हूं। ये वही, ये वो फेज है, ये फेज है जी, ये सेकेंड फेज है, ये वाला फेज है जी, जिसमें क्या हुआ है कि इन्फ्लेशन जो है वो हुई है, और ग्रेविटी जो है, क्योंकि मैंने आपको बयान कर दिया, जो स्टीवन हॉकिंग जिसका जिसका जिक्र कर रहे हैं, वो ये है कि ग्रेविटी नेगेटिव एनर्जी प्रोड्यूस करती है, या एनर्जी डेफिसिट प्रोड्यूस करती है, और मैटर की पॉजिटिव एनर्जी होती है। तो जब इसकी खास अपनी एक पिक्यूलर प्रॉपर्टी की वजह से ये फटा, तो इसका इजाफा हुआ बहुत ज्यादा, तो टोटल एनर्जी जो है वो जीरो रही। टोटल एनर्जी इन्फ्लेशन से पहले और बाद में जीरो रही, तो एनर्जी की हमें कोई जरूरत नहीं थी, ये खुद ब खुद ही हो गया, ये कि इतने ज्यादा मैटर पार्टिकल्स वजूद में आ गए उस एक चीज में से। तो ये इसकी तरफ स्टीवन हॉकिंग इशारा कर रहे हैं। तो ये अब मैं आपको इस पर भी तबसरे को लंबे चौड़े की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां पर भी क्या हुआ, जैसे वो पहला नथिंग नथिंग नहीं था, यहां पर भी इट टर्न्स आउट टू बी समथिंग। क्या समथिंग था वो? प्री एग्जिस्टिंग स्पेस एंड द रिपल्सिव ग्रेविटी मटेरियल। इसको माना जा रहा है कि ये मौजूद थे उस प्री इन्फ्लेशनरी छोटी सी कायनात में, स्पेस के अंदर, जो वजूद में आई थी क्वांटम फ्लक्चुएशन के तरीके पर, फ्लक्चुएशन जो पार्टिकल्स वजूद में आ रहे हैं, टूट रहे, बन रहे होते हैं। तो ये जो रिपल्सिव ग्रेविटी मटेरियल था, इसकी पेक्यूलर प्रॉपर्टी थी एंटी ग्रेविटी की, जिसकी वजह से ये पूरा इंफजार हुआ। यानी ये ऐसी बात है कि छोटा सा एटॉमिक बॉम्ब आप मुझे दे देंगे तो वो खुद ब खुद फिर वो इंफजार उसके अंदर हो जाएगा या वो धमाका कर देगा। तो सेल्फ रेप्लिकेशन क्या हो, ये भी उसकी खास प्रॉपर्टी थी कि वो जो छोटा सा जो जो पैश था, वो जो एंटी ग्रेविटी मटेरियल का, वो सेल्फ रेप्लिकेट हुआ और उसने बहुत ज्यादा एनर्जी पैदा की, और एट द एंड ऑफ द डे ग्रेविटी की वजह से टोटल एनर्जी जीरो रही। तो जो बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस की, उसी एनर्जी ने बाद में ये नॉर्मल मैटर पार्टिकल्स इनको वजूद बख्शा। तो इसके लिए हमें किसी एनर्जी की, किसी आउटसाइड से खुदा की मुदाखलत की कोई जरूरत नहीं। ये है जी इनका थीसिस। इस पर जो आखिरी दो चार कॉमेंट्स हैं वो ये हैं कि इसको फ्री लंच हाइपोथेसिस कहा जाता है कि यूनिवर्स जो है ना, कहा जाता है ना कि देयर इज नो फ्री लंच, आपको अपना खाना तलाश करने के लिए हमेशा कुछ तगोदो करनी पड़ती है, कोई चीज फ्री नहीं होती कायनात में। इवन स्टेट्स के अंदर सांस लेना भी फ्री नहीं होता, आप टैक्स देते हैं उसका, सो टू स्पीक। तो ये अगर ये फ्री लंच हाइपोथेसिस अगर सच भी इसको माना जाए, तो क्या बता रहा है ये? सिर्फ और सिर्फ हाउ क्वेश्चंस को आंसर कर रहा है, कि ये वाई क्वेश्चंस को आंसर नहीं कर रहा है। ये बता रहा है कि वो जो एक शुरू में चीज मौजूद थी, उसके अंदर कैसे ये सब कुछ होना शुरू हो गया। ये उसकी प्रॉपर्टीज को बयान कर रहा है, उसके लॉज को बयान कर रहा है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये जो वाई क्वेश्चंस हैं, ये उनका हमें जवाब ये नहीं देता। इसको मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करूंगा, मैं आपको वैसे भी दिखाना नहीं चाह रहा था। ये जो अभी हमने बात की है, ये इसको जरा मैं इन अ नटशेल, हो सकता है एक आध मिनट ऊपर हो जाए, उसके लिए मैं पेश की माजरा चाहता हूँ, अभी हमारे पास थोड़ा सा टाइम है। तो मैं आपको बताना ये चाहूंगा कि ये जो बात कही जाती है कि देर वॉज नथिंग, और नथिंग से खुद ब खुद कोई चीज वजूद में आ गई, तो जो फलसफे में हमारा ये डिक्टम है कि नथिंग कम्स फ्रॉम नथिंग, समथिंग हैज टू बी देयर टू प्रोड्यूस समथिंग, ये अपनी पूरी जगह पर इस फिजिक्स के सारे बयानिए के बाद भी मौजूद रहता है। तो इसमें मैं आपको थोड़ी सी तवज्जो देना चाहूंगा, ये जो सर पीटर माधवा थे, इन्होंने 1960-70 की दहाई में कुछ किताबें लिखी थी, इनको मैं तेजी से जल्दी से पढ़ देता हूँ। ये इन्होंने कुछ एडवाइसेस की थी यंग साइंटिस्ट को, ये नोबेल लॉरियर थे, नोबेल प्राइज विनर थे, टॉप ऑफ द लाइन साइंटिस्ट थे, और बिल्कुल सही इन्होंने कुछ कही थी, एडवाइसेस दी थी, तो वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहली बात तो जो उन्होंने की, ये हमारा तबसरा बनता है इसी सारे स्टीवन हॉकिंग और ये बाकी लोगों के बयानिए पर, कि देयर इज नो क्विकर वे फॉर अ साइंटिस्ट टू ब्रिंग डिसक्रेडिट अपॉन हिमसेल्फ एंड अपॉन हिज प्रोफेशन देन राउंडली टू डिक्लेयर दैट साइंस नोज और सून विल नो द आंसर्स टू ऑल क्वेश्चंस वर्थ आस्किंग एंड दैट क्वेश्चंस व्हिच डू नॉट एडमिट अ साइंटिफिक आंसर आर इन सम वे नॉन क्वेश्चंस और सूडो क्वेश्चंस दैट ओनली सिंपलटन्स आस्क एंड ओनली द गलीबल प्रोफेस टू बी एबल टू आंसर। कि साइंस तमाम चीजों का जो जो है वो उसको जवाब के तौर पर आप साइंटिफिक चीजें पेश करें, और ये कहें कि भाई साइंस हर चीज का उसके पास जवाब है, और जो साइंटिफिक क्वेश्चंस नहीं है, दूसरे वाई किस्म के क्वेश्चंस है, व्हाई इज देयर समथिंग रादर देन नथिंग, बिल्कुल फजूल सवाल है, ये जो भी साइंटिस्ट कहेगा तो वो अपने आप को डिस्क्रेडिट करेगा और अपने आप को एक मुश्किल सिचुएशन में डालेगा, क्योंकि साइंस से ये बियॉन्ड है क्वेश्चन। देखिए मैं बड़ी जल्दी से ये भी पढ़ देता हूँ उनकी दो। The existence of a limit to science is, however, made clear by its inability to answer childlike elementary questions having to do with first and last things. वो ये कह रहे हैं कि साइंस की एक लिमिट है, साइंस का अपना एक दायरा कार है जिसमें वो कुछ चीजों का जवाब देती है। साइंस बाय डेफिनेशन इन चीजों का जवाब नहीं दे सकती, कि क्वेश्चन सच एज हाउ डिड एवरीथिंग बिगिन, देखें एग्जैक्टली यही उन्होंने पिन पॉइंट किया कि हाउ डिड एवरीथिंग बिगिन। साइंस को कोई चीज देंगे तो वो आपको बताएगी कि वो इवॉल्व कैसे हुई, ये नहीं बताएगी कि वो शुरू में जो चीज थी वो कहां से आई। व्हाट आर वी ऑल हेयर फॉर, पर्पस के जो क्वेश्चंस होते हैं, व्हाट इज द मेथ, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ लिविंग, ये वही पर्पस का क्वेश्चन है। इट इज नॉट टू साइंस देयरफॉर बट टू मेटाफिजिक्स, इमेजिनेटिव लिटरेचर और रिलीजन दैट वी मस्ट टर्न फॉर आंसर्स टू क्वेश्चंस हैविंग टू डू विद फर्स्ट एंड लास्ट थिंग्स, स्पॉट ऑन। और पीटर माधवन, आपको बता दूं कि ये रिलीजियस नहीं थे, इसीलिए रिलीजन को और इमेजिनेटिव लिटरेचर को इन्होंने खुद से बयान कर दिया, लेकिन ये लिमिट्स ऑफ साइंस को बहुत अच्छे तरीके से सामने रख रहे हैं, ये भी एथिस्ट। और आखिरी बात ये सिर्फ ये बताने के लिए यहाँ पर रखी गई है कि ये साइंस बैशिंग नहीं है बल्कि साइंस का सही बयान। देखिए वो बयान कहते हैं, साइंस इज अ ग्रेट एंड ग्लोरियस एंटरप्राइज, द मोस्ट सक्सेसफुल आई आर्ग्यू दैट ह्यूमन बीइंग्स हैव एवर एंगेज्ड इन। टू अप्रोच इट फॉर इट्स इनएबिलिटी टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस वी शुड लाइक टू पुट टू इट इज नो मोर सेंसिबल देन टू अप्रोच अ रेलवे लोकोमोटिव फॉर देन टू अप्रोच अ रेलवे लोकोमोटिव फॉर नॉट फ्लाइंग और इन जनरल नॉट परफॉर्मिंग एनी अदर ऑपरेशन फॉर विच इट वॉज नॉट डिजाइन। वो ये कह रहे हैं कि साइंस एक बहुत जबरदस्त एंटरप्राइज है, हमें बहुत सारी हकीकतों का इसे इंकशाफ होता है। साइंस से ये वाइल्ड क्वेश्चन पूछना और फिर फ्रस्ट्रेशन का शिकार होना, या ये कहना कि भाई साइंस नहीं दे सकती तो साइंस पैसिंग शुरू कर देना, ये ऐसा ही है कि ट्रेन से आप ये उम्मीद लगाकर बैठ जाए कि वो उड़ना शुरू कर। भाई उसका अपना एक, ये वो डिकार्ट वाली बात है जो हम लास्ट टाइम भी जिक्र किया था कि साइंस हम अब फलसफे में बहुत वाई क्वेश्चंस पर हो गया, हमने बहुत इस पर मगजमारी कर ली, तो अब साइंस में हम ये देखते हैं कि भाई हाउ चीजें काम कैसे करती हैं। बिल्कुल, ये लास्ट स्लाइड है, इसमें मैं ये एक डायग्राम जो बाद में हम बहुत तफसील से देखेंगे ये आपके सामने रखना चाह रहा था। इसमें आपको बताना ये था कि ये देखें, ये है वो प्रिमिटिव स्पेस और एनर्जी या वैक्यूम, ये हालतें तब्दील करता चला जा रहा है तो चीजें वजूद में आती चली जा रही हैं। ये आप मुझे देंगे टाइम जीरो पर तो यहां से साइंस शुरू होगी। साइंस इसके पीछे जाके ये नहीं बता सकती ये कहां से है। ताहम इसका ये मतलब नहीं है कि आप एक और बहुत बड़े फलसफियाना मुगालते में पड़ जाएं और ये कहें कि इसकी हमारे पास कोई तौजीह नहीं है तो खुदा ने ऐसा कर दिया था। ये गॉड ऑफ द गैप होगा जिसको बहुत, जो बहुत हद फे तनकीद बनता है, जिस पर हम बाद में जिक्र करेंगे, वो ये कि कोई चीज आप एक्सप्लेन नहीं कर पाए तो सीधा सीधा कह दें कि खुदा ने ये किया। और मैं आपको बताऊं कि इस चीज को जब हम एक्सप्लेन करेंगे और हम खुदा के वजूद पर बहस करेंगे इसी डेटा से और इन्हीं चीजों से, तो मैं आपको बताऊं कि जिस तरह इमानुअल कांट ने तवज्जो दिलाई थी, हालांकि वो खुदा के वजूद पर बिलीव रखते थे, जिस पे सेंस पर रखते थे, क्रिश्चियन सेंस वो नहीं था, थियोस्टिक सेंस नहीं था, लेकिन बहरहाल उन्होंने बता दिया था कि इब्राहिमी खुदा का वजूद यहाँ से साबित नहीं होता। इब्राहिमी खुदा का वजूद जो है वो फिर रिलीजन अपने आर्ग्यूमेंटेशन देगा और अपने दलाइल पेश करेगा। यहां से हम आर्ग्यू करेंगे खुदा के वजूद पर, लेकिन आप ये नहीं कह सकते सीधे सीधे कि इसकी एक्सप्लेनेशन हमारे पास नहीं है तो खुदा ने किया होगा। ये बहुत बड़ा एक मुगालता है जिसको मैं चाहूंगा कि ये लास्ट बात है जो मैं कर रहा हूँ, अगली दफा हम यहीं से इसको शुरू करेंगे और मैं आपसे पूछूंगा कि ये जो चीज है ये कहाँ से वजूद में आई। ये अगर कोई बंदा कहता है कि ये खुदा इसका जवाब है तो वो बंदा ये क्यों कहता है, ये लाजमी एक पूछने वाली बात होगी। इसी के साथ मैं आप लोगों का और तमाम जो कोलेबोरेटिव पार्टनर्स हैं, उस्तादजा हैं, सबका मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगा।